ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सवासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिंग गाढ़ं पड़येन भद्रं स्वनाम प्रेक्षाद् भगवत् प्रजानं। श्री भगवान के कृपा से अब हम लोग उनके दो महाभागवत भक्तों के बीच होने वाले संवाद को सुनेंगे। एक हैं परम भागवत उद्धव और दूसरा श्री विदुर जी, दोनों महाभागवत पुरुष हैं और दोनों श्री कृष्ण के बिल्कुल निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। कृष्ण भक्ति में बढ़ चढ़कर हैं। भगवान के दिव्य धाम लीला भूमि श्री वृंदावन में यमुना के तट पर दोनों महापुरुष मिले हैं आपस में। एक दूसरे को देखकर भक्तों की क्या अवस्था होती है, क्या दशा होती है, यहाँ हम देख सकते हैं। विदुर जी भारतवर्ष के भ्रमण करते हुए जब भगवान के धाम वृंदावन में पधारे तो यमुना जी के पावन तट पर महाभागवत उद्धव का दर्शन किए। काले न जावत यमुना मुपेत्य तत्रो धमम भागवतम ददर्श। उस ब्रजभूमि में यमुना के तट पर उद्धव दिखे। उद्धव को देखकर विदुर जी सोच रहे हैं, उनके मानसिक भावनाओं को सुखदेव गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। विदुर जी सोच रहे हैं, यह उद्धव कौन है? सब वासुदेवानु चरम प्रशांतम, यह वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के प्रिय पार्षद है। वासुदेवानुचरम, वासुदेव का अनुचर है। अनुचर का अर्थ होता है पीछे पीछे चलना, फॉलो करने वाला, जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं वैसा हूबहू करने वाला, अनुगमन करने वाला। अथवा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी करना उपयुक्त हो वो करने के लिए तैयार रहने वाला। किंकर या अनुचर एक ही अर्थ में होता है। किंकर का एक विशेष अर्थ है जो सदैव तत्पर रहता है, क्या करूं क्या करूं, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, किंकर मुझे क्या करना है क्या करना है, हमेशा इस जिज्ञासा के मूड में जो रहता है उसको किंकर कहते हैं, सेवक। उसी प्रकार अनुचर, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, चर माने चलना, साथ साथ में चलना, ये देखते हुए कि इनको क्या चाहिए, किस काज से खुश होंगे। जब भी पीछे मुड़ कर देखें तो वही दिखाई दे, सेवा के लिए तत्पर। तो ऐसे अनुचर थे उद्धव जी। श्रीमद् भागवतम में अभी इसी प्रसंग में अंत में आप सुनेंगे कि उद्धव जी को श्री कृष्ण के आंख कहा गया है। उद्धव के आंख से श्री कृष्ण देखते थे। कोई भी निर्णय लेना होता तो उद्धव पर सौंप देते, उद्धव बताओ मुझे क्या करना है, और जो भी उद्धव जी कहते उसको श्री कृष्ण करते। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि वासुदेवानुचर है, वासुदेव श्री कृष्ण के अनुचर है। और प्रशांतम, प्रशांतम का अर्थ है बिल्कुल भौतिक कामनाओं से उपरांत, कुछ नहीं चाहिए, किसी प्रकार के भौतिक सुख भोग की कोई लालसा नहीं। वास्तव में चित्त की सबसे बड़ी गंदगी है विषय भोगों की लालसा। भोगों की जो कामना है वो चित्त को कलुषित कर देती है, गंदा कर देती है। और ऐसे गंदे चित्त वाले अशांत रहते हैं, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध उद्योग करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमको भोग मिले, और उसके लिए उनकी शांति समाप्त हो जाती है, अशांत होते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। लेकिन कृष्ण भक्त कृष्ण की सेवा में संतुष्ट रहता है, उसे भौतिक कामनाएं ग्रसित नहीं कर पाती, इसलिए शांत रहता है। और प्रशांत का मतलब बिल्कुल शांत, प्रकृष्ट रूपेण शांत। तो उद्धव भोगों की वासनाओं से बिल्कुल उपरांत है, इसलिए उनको प्रशांत कहा गया है, प्रशांतम। और साथ ही विदुर जी सोच रहे हैं उद्धव की विशेषता कि बहुत पढ़ा लिखा क्वालिफाइड व्यक्ति है, बृहस्पति का शिष्य है। बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम, देव गुरु बृहस्पति के प्रख्यात शिष्य है उद्धव, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, एक जगह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। साक्षात शिष्य का अर्थ है कि जिसको विशेष ध्यान से गुरु शिक्षा दें, स्वयं पढ़ावे। कभी कभी स्कूल में विद्यालय में ऐसा होता है कि जो मुख्य शिक्षक होते हैं वो कम पढ़ाते हैं और दूसरों के द्वारा वो शिक्षा दे देते हैं, किसी तेज तरह के विद्यार्थी को लगा देते हैं पढ़ा दो। वैसा नहीं, स्वयं बृहस्पति जी पढ़ाए थे और बुला करके उद्धव को स्वयं शिक्षा देने की इच्छा से पढ़ाए थे, चाहते थे कि उद्धव को हम शिक्षा दें, स्वयं बुलाए थे और विशेष ध्यान पूर्वक उनको पढ़ाए, श्री साक्षात शिष्य थे बृहस्पति जी के। ऐसे उद्धव को पाकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए और उस प्रसन्नता में भर करके दौड़ करके उद्धव का आलिंगन किए। आलिंग गाढ़म प्रणयेन, ने प्रणयेन गाढ़म आलिंग्या, ने प्रेम से गाढ़ दृढ़ आलिंगन किए, मतलब पकड़ लिए, बहुत देर तक छोड़ नहीं रहे थे, एकदम अपने वक्षस्थल से पकड़ लिए अपने गोद में उद्धव को और देर तक आलिंगन किए रहे। इसके बाद आलिंगन करने के बाद श्वानम ज्ञातिनाम भद्रम अपरीक्षत, भगवत प्रजानम श्वानम भद्रम अपरीक्षत। इसके बाद कृष्ण के द्वारा जो पोष्य प्रजा है, अपने बंधु जादव लोग हैं, उनके विषय में कुशल प्रश्न करने लगे, समाचार पूछने लगे। अब विदुर जी प्रश्न करते हैं, 10 श्लोकों में जादवों के विषय में प्रश्न किए हैं, 1 श्लोक में स्पेशल श्री कृष्ण बलराम के विषय में और 9 श्लोकों में जादवों के विषय में, अलग अलग लोगों के नाम रखकर। कोई क्रम नहीं है, एकदम भाव विह्वल होकर अतिशय प्रेमावेश में प्रश्न करते जा रहे हैं और एक एक व्यक्ति के विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण के विषय में पूछते हैं, श्री कृष्ण बलराम के साथ ही। श्री कृष्ण बलराम 2 व्यक्ति नहीं है, एक ही श्री भगवान 2 रूप में प्रकट है। अपने को अनेक रूप में श्री भगवान प्रकट कर सकते हैं। यहाँ जदुवंश में दो रूप में आए हैं, तो उनके विषय में, दोनों के विषय में पूछते हैं। कचित पुराण पुरुषौ स्वनाभ्य पद्मानुवृते किलावतीर्ण आसात उर्व्यः कुशलम विधाय कृतक्षण कुशलम शूरगे स्वनाभ्य पद्मानुवृत्याः। अपने नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के प्रार्थना से यह किल अवतीर्ण इस जगत में जिन्होंने अवतार लिया, अपने पुत्र ब्रह्मा के प्रार्थना से जिन्होंने इस जगत में अवतार लिया है, क्यों अवतार लिया है? उर्व्यः कुशलम विधाय, इस पृथ्वी का मंगल करने के लिए, पृथ्वी का कुशल करने की इच्छा से जो इस प्राकृत जगत में अवतार लिए हैं। कृतक्षण सबको आनंद देने वाले सचिदानंद स्वरूप, पुराणौ पुरुषौ ऐसे आदि पुरुष, पुराण पुरुष श्री कृष्ण सुरगेहे कचित कुशलम आसाते, सुरसेन के गृह में कुशल से है ना। देखिए विदुर जी के प्रश्न करने का जो स्टाइल है अद्भुत है। अपने पुत्र ब्रह्मा के प्रार्थना से जो इस जगत में अवतार लिए, काचित पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पद्मानुवृते किलावतीर्णौ, स्वनाभ्य पद्मा अपने नाभि से निकलने वाले कमल पर उत्पन्न ब्रह्मा के विशेष आग्रह पर प्रार्थना करने पर जिन्होंने इस जगत में अवतार लिया है, यह किल अवतीर्णौ जो यहाँ अवतार लिए हैं श्री कृष्ण बलराम, ब्रह्मा के प्रार्थना से अवतार लिए, क्या करने के लिए अवतार लिए? तो कहते हैं उर्व्यः कुशलम विधाय, पृथ्वी को सुख देने के लिए, पृथ्वी का मंगल करने के लिए जो अवतार लिए, वो श्री भगवान कुशल पूर्वक जदुवंश में है ना। सुरगेहे कचित कुशलम आसाते आसाते, सुरसेन के घर में कुशल से है ना। अच्छा एक विशेष बात और कहते हैं, कृतक्षण, कृतक्षण मतलब जो सर्वदा आनंदित रहते हैं, जिनका स्वरूप ही सच्चिदानंद है, जिनके विषय में अकुशल का कोई सवाल ही नहीं है, ऐसे प्रभु कुशल से है ना। जिनके कुशलता में कोई प्रश्न करने का औचित्य ही नहीं है, जो सबको आनंद देने वाले हैं, नित्य मंगल स्वरूप हैं, उनके कुशलता के लिए विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं। एक विचित्र बात है, जब वो सर्वदा कुशल ही रहते हैं तो फिर कुशल पूछने की क्या जरूरत है? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं प्रीति व्यवस्था, प्रेम के व्यवस्था के कारण प्रश्न कर रहे हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रथमम तावद राम कृष्णयो कुशलम पृच्छति, सबसे पहले कृष्ण बलराम का कुशल पूछ रहे हैं, द्वि वचन में प्रयोग कर रहे हैं, पुराणौ पुरुषौ किलावतीर्णौ कृतक्षणौ, सब द्वि वचन में कृष्ण बलराम के लिए। सबसे पहले भगवान के विषय में पूछते हैं, इनके प्रश्न का प्रारंभ भगवान से और अंत भी भगवान से होगा। देखिए सूरसेनस्य गृहे काचित आसास्ते, सूरसेन के घर में ठीक से है ना, यह प्रश्न है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृतक्षण कृतत्सव, जो जहां रहते हैं श्री कृष्ण बलराम वहां उत्सव ही उत्सव रहता है, आनंद रहता है। तयो नित्य कुशलिनः अपि कुशल प्रश्नः प्रेमणै वगेय, जो सर्वदा आनंदित रहते हैं, सर्वदा कुशल रहते हैं, उनके विषय में प्रश्न करना ये प्रेम का अतिशयता का पता चलता है। प्रेमणै वगेय, इसे प्रेम का पता चलता है विदुर जी का। तो एक विशेष बात जानने लायक है, श्री कृष्ण और बलराम एक तत्व हैं, श्री भगवान हैं, और दोनों दो रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण अपने को अनेक रूप में प्रकट कर सकते हैं, किए भी अपने लीला काल में, सभी रूप अभिन्न हैं। श्री कृष्ण बलराम अद्वितीय स्वरूप है, श्री बलराम श्री कृष्ण के अभिन्न अंश हैं, और श्री बलराम के अंश हैं गर्भोदकशायी, जिनके नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ, और ब्रह्मा के प्रार्थना से कृष्ण बलराम इस पृथ्वी पर अवतार लिए और अति मानवीय लीलाओं के द्वारा सबको सुखी और समृद्ध किए। भगवत कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सुखी और समृद्ध नहीं हो सकता। स्वयं भगवान जब जिसको सुख देना चाहे वो सुखी रह सकता है, क्योंकि भक्तों के परिवार का सुख भगवान के सुख पर निर्भर करता है। अतः विदुर सर्वप्रथम भगवान का समाचार पूछ रहे हैं। अगर भगवान कुशल से हैं, आनंदित हैं, तो इसका मतलब कि पूरा द्वारिका और द्वारिका में रहने वाले जादव कुशल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। इसलिए भगवान के विषय में सबसे पहले पूछते हैं। मतलब उद्धव जी को कुछ कुछ इस प्रकार पता चल चुका था कि भगवान इस पृथ्वी को छोड़ चुके हैं, तो जब भगवान ही नहीं है तो जादवों की कुशलता का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए जादवों में का एक व्यक्ति मुख्य प्रतिनिधि, जादवों का प्राइम मिनिस्टर ही मिल गया है, इसलिए अब डिटेल जानना चाहते हैं। पूरा डिटेल जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, स्पष्ट जानकारी लेना चाहते हैं। कचित कुरुणाम परमसहन भामस आस्ते सुखमंग शौरी यो वै स्वसेनाम पितिवा ददाति बरान बदान्यो बरतर्पणे न। प्रेमाधिक के कारण प्रश्न करते जा रहे हैं, किसको पहले पूछना चाहिए किसको बाद में, इसका कोई क्रम नहीं है। अतिशय आसक्तिवश श्री कृष्ण बलराम के विषय में सबसे पहले पूछे, इसके बाद अब वसुदेव जी के विषय में पूछते हैं। कहते हे अंग, हे मेरे प्रिय उद्धव, अंग अभिन्न संबंध का द्योतक है, बिल्कुल निकटतम व्यक्ति को अंग कहा जाता है, और खासकर छोटे व्यक्ति को जो बिल्कुल निकटतम प्रिय शिष्य है, प्रिय बंधु है, भाई है, पुत्र है, मित्र है, तो उसको अंग कहते हैं, अभिन्न बिल्कुल निकटतम व्यक्ति। तो संबोधन करते हैं कि हे अंग, कुरुणाम परमः सुहृद नः भामः सह सौरी कचित सुखम आस्ते। कुरुवंशियों के परम हितैषी हमारे बहनोई वसुदेव जी सुख से है ना, और यह वही बदान्य, वे अतिशय उदार हैं, बहुत ज्यादा उदार हैं। स्वश्रीणाम वरतर्पणे न पितृवत बरान ददाती, क्योंकि वे अपने बहन कुंती के विदाई के समय अपने बहनोई पांडु महाराज के लिए, उनको संतोष प्रदान करने के लिए पिता के समान दान दहेज दिए। कुंती के बड़े भाई थे वसुदेव जी, ये अपनी बहन के विदाई के समय बहुत प्रचुर मात्रा में दहेज दिए थे, उसको याद कर रहे हैं। तो वसुदेव जी के विशेष विशेषताओं में उनके उदारता और बहन कुंती के प्रति स्नेह का स्मरण कर रहे हैं विदुर जी। वसुदेव जी का संबंध कुरुकुल से बड़ा घनिष्ठ था, अपने बहन कुंती का भी विवाह किए थे कुरुवंश में पांडु महाराज के साथ, और स्वयं वसुदेव जी का भी विवाह कुरुवंश में हुआ था। रोहिणी जी बलराम जी की मां कुरुकुल की थी, इसलिए उनको पौरवी कहते हैं, पूर्व वंश की पौरवी रोहिणी जी। भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी की 16 पत्नियां थी, उनमें से एक का नाम था पौरवी अर्थात रोहिणी, जो बलराम जी की माता थी। तो बलराम की माता रोहिणी विदुर जी की बहन लगती थी, पांडु महाराज और धृतराष्ट्र की बहन थी। अतः वसुदेव जी विदुर जी के बहनोई भी थे। भामह का अर्थ बहनोई होता है, और इसके साथ ही वसुदेव जी की बहन कुंती का विवाह पांडु महाराज के साथ हुआ था, इसलिए वसुदेव जी साला भी थे, पांडु महाराज के साला थे तो विदुर जी के भी थे। कुंती वसुदेव से छोटी बहन थी, अतः बड़ा भाई होने के कारण वसुदेव जी कुंती को पुत्री के समान स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते थे। कुंती के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़े वसुदेव जी। बहुत अधिक मात्रा में दहेज दिए, कुंती पर विशेष ध्यान देते थे, और संयोग बस असमय में कुंती विधवा हो गई। इसके कारण वसुदेव जी का और विशेष ध्यान कुंती पर था। तो वसुदेव जी के कुशल पूछते समय अपने बहन कुंती के प्रति किए गए वसुदेव के व्यवहारों को विदुर जी याद कर रहे हैं, और असाधारण उदार व्यवहार कर रहे हैं। यह वही बदान्य, बहुत बड़े उदार व्यक्ति थे वसुदेव जी। वो कुशल से है ना, उनकी उदारता की चर्चा करते हुए पूछ रहे हैं, ऐसे वसुदेव कुशल से है ना। तो यहां से लेकर आगे 8 श्लोक और, मतलब 9 श्लोकों में जादों की कुशलता पूछ रहे हैं। यदूनाम कुशलम पृच्छति, 9 भी 9 श्लोक में, 27 से लेकर 35 श्लोक तक। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, स्वश्रेणामिति कुंत्या स्नेहातिशयो धन्यते, अन्यासु स्वश्रीषु यथा भावात् दृष्टे। अपनी बहन कुंती के प्रति वसुदेव जी के विशेष स्नेह का चर्चा कर रहे हैं। बरान अभिप्सितान अर्थान बराणाम तत्पतिनाम तत्पणेन संतोषेन सह। और एक विशेष बात और विदुर जी कह रहे हैं कि केवल कुंती का ही नहीं, कुंती के पति पांडु महाराज के संतोष के लिए भी दान दहेज दिए, या पांडु महाराज कुछ अपेक्षा करते तो वसुदेव जी उसको निश्चित पूरा करते। अपने बहन के साथ संबंध तो था ही, बहन के संबंध से बहनोई पांडु महाराज के प्रति भी उनका बहुत लगाव था, उसको याद कर रहे हैं, और इसके साथ उनके विशेषताओं की चर्चा करते हुए उनका कुशल पूछ रहे हैं, वो ठीक से है ना, कुशल से है ना। इसके बाद वसुदेव जी का कुशल पूछकर प्रद्युम्न जी का पूछते हैं, कोई क्रम नहीं है, उग्रसेन जी का बाद में पूछेंगे, अब प्रद्युम्न जी के विषय में पूछते हैं, कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न। कचेत बरुथाधिपति जदु नाम प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीर यम रुक्मिणी भगवतो भिलेभे आराध्य विप्रं स्मरमादि सर्गे। तहे अंग, बहुत सुंदर संबोधन कर रहे हैं। अंग संबोधन अत्यंत आत्मीयता का द्योतक है। हे मेरे प्रिय उद्धव, जदूनाम बरुथाधिपति वीरह प्रद्युम्न कचित सुखम आस्ते। जदुवंशियों के सेनापति वीर प्रद्युम्न कुशल से है ना, बस हो गया एक वाक्य में, लेकिन अब प्रद्युम्न की विशेषता। आदि सर्गे यम अस्मरम रुक्मिणी विप्राण आराध्य भगवत अभिलेभे। जो पूर्व जन्म में साक्षात कामदेव थे, जिनको श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ब्राह्मणों की आराधना करके, ब्राह्मणों को संतुष्ट करके, ब्राह्मणों की कृपा से भगवान कृष्ण के द्वारा अपने पुत्र रूप में प्राप्त की थी, वो पूर्व समय में साक्षात कामदेव थे। साक्षात कामदेव ही रुक्मिणी के पुत्र बनकर आए। कैसे बनकर आए? ब्राह्मणों को संतुष्ट, ब्राह्मणों की संतुष्टि से रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, उनकी आराधना की, उनको दान दक्षिणा दी, ब्राह्मणों प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए तुमको श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो। और रुक्मिणी के मन में था कि इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे सुंदर यशस्वी पुत्र मुझे प्राप्त हो। तो कामदेव ही साक्षात प्रद्युम्न के रूप में आए। यद्यपि प्रद्युम्न श्री भगवत स्वरूप है, भगवत परिकर है, भगवत रूप है, साक्षात चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न जी हैं। स्वयं श्री कृष्ण अद्वैत तत्व ब्रजेन्द्रनंदन जब अपने को विस्तारित करते हैं तो उनका दूसरा स्वरूप होता है श्री श्री बलराम के रूप में। और श्री बलराम जब अपना विस्तार करते हैं तो प्रथम चतुर्व्यूह जो गोलोक में प्रस्तुत होता है, विस्तृत होता है, उसके चार रूप होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो श्री प्रद्युम्न स्वयं भगवत स्वरूप है, अपने स्वरूप में भगवत परिकर है और नित्य परिकर है, सदैव जब से भगवान है तब से है। लेकिन भगवत परिकर गण भगवत लीला में सहायक रूप में प्रकट होते हैं लीला संपादन के लिए, और असुर विनाश हेतु वो देवताओं को आश्रय देते हैं। परिकरों का कार्य असुर विनाश नहीं है, श्री कृष्ण परिकर तो केवल लीलाई मान रहते हैं, भगवान के लीला में सुख पूर्वक लीला का साधन करते हैं। जब लीला के अतिरिक्त संसार के व्यवस्था संबंधी कार्य आता है, मैनेजमेंट, असुर संहार, धर्म की स्थापना आदि, तो ये काम दूसरे देवताओं के द्वारा कराते हैं। तो असुर विनाश हेतु देवता लोग उन परिकरों में प्रविष्ट होकर अवतरित होते हैं, देवता लोग आते हैं। जैसे भगवान के नित्य माता पिता वसुदेव और देवकी में प्रिष्णी सुतपा, सांब में कार्तिकेय, अर्जुन में इंद्र, उद्धव में वसु, भीमसेन में वायुदेव इत्यादि, परिकरों में देवत्व कहकर उनका उत्कर्ष सिद्ध किया जाता है। क्योंकि भगवान के सभी परिकर नर लीलाभिमानी होते हैं, मनुष्योचित व्यवहार करते हैं, लेकिन उनको देवत्व कहकर उनके उत्कृष्टता को स्थापित किया जाता है। प्रद्युम्न जी कामदेव नहीं थे, कामदेव उनका आश्रय लेकर भूभार हरण कर रहे थे। तो इनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए रुक्मिणी जी बहुत तपस्या की, ब्राह्मणों को दान की, ब्राह्मणों संतुष्ट होकर उनको आशीर्वाद दिए। भागवत में कथा है जब प्रद्युम्न जी रुक्मिणी के गर्भ से अवतरित हुए, अभी रुक्मिणी जी अपने पुत्र के साथ सुतिका गृह में थी, उसी समय नरकासुर प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया। अचानक द्वारिका में आया और सुतिका गृह में प्रवेश करके उस बच्चे को लेकर भाग गया आकाश मार्ग से, और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। निकट में ही समुद्र के तट पर ही द्वारिका है, बस ले जाकर आकाश में उड़ कर ले गया और फेंक दिया समुद्र में। और उस बालक को एक मत्स्य खा गया, विशाल मछली, और संयोग से मछली मारने वाले मलाह उसी मत्स्य को पकड़ लिए, कई मछलियां पकड़े उसमें, उसको भी पकड़ लिए जो प्रद्युम्न जी को निगल गया था। और मारकर मछली मारकर आए तो अपने स्वामी नरकासुर को भी कुछ मछली देना था, तो जो बड़ा मत्स्य था उसी को दे दिए नरकासुर को, जो प्रद्युम्न जी को निगल गया था अंदर। तो जब उस मछली को पकाने के लिए किचन में लाया गया और उसका गला काटा गया, तो उसके पेट में से एक सुंदर चमकता हुआ सोने का बालक निकला, जीवित, मरा हुआ नहीं था, जीवित था। और किचन में काम करती थी मायावती, नरकासुर के किचन में काम करती थी, भोजन बनाती थी नरकासुर। उस सुंदर बालक को देखकर एकदम चकित हो गई। बहुत सुंदर बालक था, स्वाभाविक आकर्षक था। तो मायावती अपने स्वामी नरकासुर से पूछी कि इस बालक को हम पुत्र रूप में पालन कर सकते हैं? कहे ठीक है लो। लेकिन नरकासुर समझा नहीं कि रुक्मिणी का बेटा वही प्रद्युम्न है, वो नहीं समझा। कहा ठीक है। तो मायावती उसको अपना बालक मान करके पालन करने लगी। बहुत सुंदर बालक था। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है धीरे धीरे, वैसे वो बालक थोड़े ही दिन में बहुत सुंदर और बड़ा तीव्र गति से विकसित हो रहा था। दिन पर दिन उसकी सुंदरता निखरती जाती और शरीर बड़ा अद्भुत दिव्य लगता था। जब कुछ दिन का बालक हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो एक दिन देवर्षि नारद आए और कहे, मायावती यह कोई दूसरा नहीं है, ये तुम्हारा पति साक्षात कामदेव है। और मायावती रति थी, कामदेव की पत्नी। जब भगवान शिव कामदेव पर क्रोधित हुए और अपनी दृष्टि से जला दिए, तब कामदेव की पत्नी रति भगवान शिव के चरणों में बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी। तो शिव जी कहे कि देखो, अब तुम्हारा पति मूर्त रूप में नहीं रहेगा, लेकिन प्रत्येक पुरुषों के हृदय में रहेगा अव्यक्त रूप से कामदेव। तो कही नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरे पूर्ण स्वरूप में मेरा पति चाहिए। बहुत रोने लगी, बहुत प्रार्थना की। तो भगवान शिव कहे कि तब तो तुमको इंतजार करना पड़ेगा, जब श्री भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो उनके प्रथम पुत्र के रूप में रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारा पति अवतार लेगा, जन्म लेगा, फिर तुम अपने पति को प्राप्त कर सकती हो। तो अब उस दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो रहे कहाँ? तो बहुत बड़ा समर्थ असुर था नरकासुर, उसके वहां किचन में बेचारी सेवा करके रह रही थी, लेकिन वो रति रूप में नहीं थी, उस अपना नाम चेंज कर ली थी। उसका नाम था मायावती। बहुत माया भी जानती थी, बहुत तांत्रिक विद्या जानती थी, बहुत योग साधना जानती थी, रिद्धि सिद्धि अष्ट निधि अष्ट नौ निधि अष्ट सिद्धि सब कुछ जानती थी मायावती। तो नरकासुर नहीं जानता था कि रति है, वो जानता था ये दासी भोजन बनाने वाली है। तो जब नारद जी आए और कहे कि ये रति, तुम्हारा पति कामदेव ही इस रूप में है और ऐसी घटना हुई है, किसी भी प्रकार तुम इसका पालन करो और नरकासुर से अभी प्रारंभ में थोड़ा सुरक्षित रखो बचाकर, और इसको योग विद्या का ज्ञान देकर, तो स्वयं भगवान है, भगवान के ही रूप है, बाद में इनका सब कुछ विकसित हो जाएगा, लेकिन संभाल कर रखना, ये तुम्हारे पति हैं। तो धीरे धीरे मायावती सेवा करती थी, धीरे धीरे जब प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे, तो जो मातृ स्नेह था, पोष्य भाव, बच्चे को पालन करने की भावना, उसमें थोड़ा अंतर आ गया। तो एक दिन प्रद्युम्न जी कहे कि हे देवी, तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन दिख रहा है। तो वो कही कि वो कैसा परिवर्तन? तो अब तुम मातृवत व्यवहार नहीं कर रही हो, अब कामिनी जैसा व्यवहार कर रही हो, इसका क्या कारण है? तुम बचपन से, जब से मैं होश संभाला, मुझे पालन करने वाली माँ के समान हो, लेकिन अब तुम्हारा भाव बदल रहा है, इसका क्या कारण है? तो मायावती हंसते हुए कही कि हे स्वामिन, इस तरह की घटनाएं हुई है, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रुक्मिणी के गर्भ से अवतार लिए हैं, भगवान शिव ने कहा था कि आप हमारे पति कामदेव हैं, तो मैं आपको बालक के रूप में प्राप्त की, देवर्षि नारद के उपदेश से मैं आपको संभाल की, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती, आप हमारे पति ही हैं। तो प्रद्युम्न जी इस बात को जानकर कहे, लेकिन इस नरकासुर के यहां कब तक नौकरी करोगी? तो बतलाई, जब तक वो जीवित है उसको तो मारना पड़ेगा ना। तो प्रद्युम्न जी को युद्ध की शिक्षा भी दी। और एक दिन प्रद्युम्न जी नरकासुर को चैलेंज पूर्वक चुनौती किए और फिर भयंकर युद्ध हुआ, उसमें प्रद्युम्न जी के हाथ से नरकासुर मारा गया। और मायावती प्रद्युम्न जी को लेकर आकाश मार्ग से द्वारिका आई। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जैसे चमकते हुए बिजली बादलों के बीच से गुजरती है, वैसे सांवला सलोना कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न और बिजली से चमकती हुई मायावती उनको लेकर आकाश मार्ग से द्वारिका में आई। और द्वारिका में आकर जब रुक्मिणी जी के भवन में प्रवेश की तो श्री कृष्ण की पत्नियां प्रद्युम्न जी को देखकर एक बार संभ्रम के अवस्था में हो गई, कौन है? हूबहू श्री कृष्ण जैसा थे, यहां तक कि रुक्मिणी जी को भी भ्रम हो गया। और एक दूसरी पत्नी के साथ आ रहे हैं। बाद में मायावती बतलाई कि हमारे पति हैं, लेकिन इससे उन लोगों का समस्या समाधान नहीं हुआ। कृष्ण बलराम आए, सब लोग आए, एक जुगल जोड़ी आए हैं, पति पत्नी एकदम श्री कृष्ण जैसा, पूरा द्वारिका में हल्ला हो गया, सब लोग जुटे। तब तक देवर्षि नारद पहुंचे और देवर्षि नारद सबके समस्याओं का समाधान किए। कहे, यह है रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न, जिनको सुतिका गृह से माया नरकासुर अपहरण किया था और मछली के पेट में पाए गए, जिसका पालन मायावती की है, यह इनकी नित्य पत्नी रति है। तो सारे समस्याओं का समाधान किए, फिर दोनों का आपस में विवाह भी हुआ और इस प्रकार प्रद्युम्न जी द्वारिका में रहने लगे। ये सब कथाएं हैं। तो ये सब कथा दशम स्कंद के उत्तरार्ध में वर्णन है। तो वो बहुत सौभाग्य से जिनको प्राप्त की थी रुक्मिणी जी, वह साक्षात कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न कुशल से है ना, उनके विषय में पूछ रहे हैं। इसके बाद फिर उग्रसेन जी के विषय में पूछते हैं। अब देखिए, कोई क्रम नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनके बाद बड़े के बाद क्रम कर रहे हैं या छोटे से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जिनके विषय में इनके मन में आता है उन्हीं के विषय में पूछ रहे हैं। तो कचित सुखम सात्वत विष्णु भोज दासारह काणाम अधिपशास्ते यमभ्य सिंचन छतपत्र नेत्रो निपासनासम परिहृत दूरात। सात्वत विष्णु भोज दशार काणाम अधिप सह कचित सुखम आस्ते। जादवों का कई ग्रुप था, सात्वत वंशी जादव, विष्णु वंशी, भोज वंशी, दशार, अंधक, कुकुर, इस प्रकार के कई वंश एक साथ था और सारे जदुवंशियों के अधिपति थे उग्रसेन जी। तो सात्वत विष्णु भोज दशार काणाम अधिप अधिपति उग्रसेन सह कचित सुखम आस्ते, कुशल से हैं उग्रसेन जी, कुशल से हैं ना। अच्छा, उग्रसेन जी के विषय में पूछकर अब उनकी विशेषता। निपासनासम परिहृत दूरात, और जादों के आधिपत्य राज सिंहासन को बहुत दूर से जो छोड़ चुके थे, मन से हटा चुके थे कि मैं दोबारा राजा बनूंगा। यम सतपत्र नेत, जिनको कमल नयन श्री कृष्ण अभ्य सिंचत पुनः राज सिंहासन पर बिठाए। उग्रसेन जी पूरा पूरा मन से हटा चुके थे कि दोबारा मैं जादवों का राजा बनूंगा, कोई आशा नहीं। पूरा निपासनासम परिहृत दूरात, बिल्कुल दूर से छोड़ चुके थे कि अब मैं राजा बनूंगा, क्योंकि उनका बेटा कंस राजा बन गया था और उक्षेन जी को अरेस्ट कर लिया था, जेल में बंद कर दिया था। जब कंस देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया इस आशा से कि देवकी के जो भी पुत्र जन्म लेंगे उनको मारूंगा, तो वो बाहर रहेंगे तो पता नहीं कहाँ छिपा देगा, क्या करेगा, जेल में जन्म लेंगे बच्चे तो हम बस मारते जाएंगे, इस प्लानिंग के तहत वो देवकी और वसुदेव को बंद कर दिया। तो इस घटना को उग्रसेन जी नहीं सह पाए। उग्रसेन जी उस समय राजा थे, कंस युवराज था। तो उग्रसेन जी कहे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे भांजे के हाथ से ही है तो है, अब क्या करोगे, जो जन्म लिया है वो मरेगा निश्चित, लेकिन तुम अपनी बहन को बहनोई को इस तरह जेल में बंद कर रहे हो, ये उचित नहीं है, वसुदेव जी इसके पात्र नहीं है, वसुदेव जी एक सज्जन साधु पुरुष है, देवकी तुम्हारी बहन है, बहन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए बेटा। समझाने का कोशिश किए उग्रसेन जी, लेकिन वही बात है, मूर्खों को उपदेश अपने ही दुख का कारण होता है। जैसे पक्षियां शिक्षा दी बंदरों को तो उनका घोंसला ही उजाड़ दिया गया, वैसे ही अब उग्रसेन जी शिक्षा देने का कोशिश किए, बस कंस कहा कि अच्छा उपदेश कर रहे हो, चलो तुम भी वसुदेव के साथ जेल में रहो, बंद कर दिया, स्वयं राजा बन गया। बड़ा उदंड था, दुष्ट था कंस, तो वसुदेव जी के हाथ से राज सत्ता छीन चुका था और उनको बंद कर दिया जेल में। जब श्री कृष्ण कंस का वध कर दिए और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त करने के लिए गए, कृष्ण बलराम दोनों भाई जब पहुंचे कारागृह में, तो अपने पिता वसुदेव के हथकड़ी बेड़ी को खोलते हुए उनको मुक्त करते हुए कहे, पिताजी मुझे माफ कीजिएगा, मेरे कारण आपको जेल में रहना पड़ा, मैं ही कारण हूं ना आप लोगों के दुख का। बड़े विनीत भाव में एक पुत्र का धर्म निभाते हुए भगवान जब अपने माता पिता से विनीत भाव में कहने लगे और जेल से मुक्त कर दिए, तो वसुदेव जी कहते हैं कि बेटा हमारे साथ तुम्हारे नाना उग्रसेन भी जेल में हैं, कंस अपने पिताजी को भी जेल में बंद कर चुका है। तो भगवान कहे अच्छा उग्रसेन जी भी हैं, तो उग्रसेन जी के पास गए कृष्ण बलराम और उनको भी जेल से मुक्त किए। तो श्री भगवान के इस व्यवहार से उग्रसेन जी बहुत प्रसन्न हुए और इतना प्रसन्न हुए, प्रसन्नता में रोते हुए कहने लगे, हे प्रभु हम सब तरह से असमर्थ अयोग्य, आपका भजन भी नहीं किया, आप हमारे प्रति इतने स्नेहवान हैं, इतने कृपालु हैं। भगवान के चरणों में उग्रसेन जी गिर करके प्रार्थना करने लगे, प्रणाम करने लगे, भगवान उनको उठा लिए और कहे, नहीं नाना जी आप अपने राज सिंहासन को पुनः स्वीकार कीजिए, जबकि जादवों में एक से एक योग्य व्यक्ति थे राजपद के लिए, स्वयं वसुदेव जी राजा योग्य थे और भी बहुत से लोग थे, लेकिन भगवान उसी उग्रसेन को पुनः राजा बनाए। इसी प्रसंग में आप सुनेंगे आगे दूसरे अध्याय में कि उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, जब मैं वह दृश्य याद करता हूं, सुधर्मा सभा में जब श्री कृष्ण प्रवेश करते थे और जादवों के अधिपति के रूप में उग्रसेन बैठे रहते थे राज सिंहासन पर, और उनके निकट जा करके प्रणाम करके उनके खड़ाओं को चरण को छूते हुए कहते थे, हे जादवधिपति राजाधिराज महाराज, आपका सेवक आपके सामने खड़ा है, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। जब इस तरह से श्री कृष्ण बोलते थे उग्रसेन के सामने, किस तरह की योग्यता थी उग्रसेन में, कौन बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, कौन पढ़ा लिखा, बहुत बुद्धिमान, बहुत योग्य युवक, या क्या उनमें क्वालिफिकेशन था, कुछ नहीं, केवल भगवान की विशेष करुणा कि उनको राजा बनाए, और बना करके आज्ञा मांगते थे प्रतिदिन, प्रणाम करते थे, और जब निकलना होता तो फिर जाते, महाराज मैं जा सकता हूँ, उनसे छुट्टी लेकर जाते, आते समय प्रणाम करते, जाते समय प्रणाम करते। जब ये दृश्य मेरे चित्त में स्मृत होता है, जब मैं स्मरण करता हूँ, तो एकदम कांटों की तरह चुभ जाता है, जैसे पैर में कांटा गड़ गया हो, टूट गया हो, और बाद में कठोर भूमि से जब दबाव पड़ता है तो चुभता है, वैसे मुझे भगवान की हुए सब लीलाएं चुभ रही हैं, ऐसा कह रहे हैं उद्धव जी। तो इस प्रकार निपासनासाम परिहृत दूरात, राजा बनने की आशा को जो उग्रसेन दूर से छोड़ चुके थे, उनको राजा बनाए। वो उग्रसेन कुशल से है ना, उग्रसेन जी के विषय में पूछ रहे हैं। फिर आगे अब उग्रसेन जी के बाद सांब, कोई क्रम नहीं है, मैं पहले कह चुका ना, जो मन में आ रहा है उसी को पूछ रहे हैं। कचिद हरे सौम्य सुत सदृक्ष आस्ते ग्रणी रथि नाम साधु सांब असुत यम जाम्बवती व्रताड्या देवम गुहम योम विकया धृतोग्रे। हे सौम्य, हे उद्धव, श्री कृष्ण के समान ही पुत्र महारथियों के नायक सांब अच्छा से है ना, रथिनाम अग्रगणी साम क्वचित साधु आस्ते, साम जी कुशल से है ना, जो हरे सदृक्ष सुत एकदम एज इट इज कृष्ण जैसा दिखते थे सांब, वो कुशल से है ना, जाम्बवती के पुत्र थे साम जी, एकदम सुंदर कृष्ण जैसा थे। कहते हरे सदृक्ष सुत, श्री हरि श्री कृष्ण के समान ही पुत्र महारथियों के अग्रगणी साम कुशल से है ना। अच्छा, साम की क्या विशेषता है? कहते स अग्रे अंबिकाया धृत च अस्मिन जन्मनी व्रताड्या जाम्बवती यम देव गुहम असुत। कहते हैं जो पहले माता अंबिका जगदंबिका भवानी भगवान शिव की पत्नी के द्वारा कार्तिकेय के रूप में जन्म प्राप्त कर चुके थे, जो इसके पहले माता पार्वती के पुत्र के रूप में जिनका जन्म हुआ था, जो कार्तिकेय के नाम से देवताओं के सेनापति थे, वही भगवान कार्तिकेय आज जाम्बवती के पुत्र श्याम के रूप में आए हैं, वो कुशल से है ना। साक्षात कार्तिकेय आज श्याम के रूप में आए हैं, इनके जाम्बवती के व्रताड्या माने व्रत परायणा, जाम्बवती जी कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाने के लिए बहुत व्रत की थी, वही कार्तिकेय आज श्याम के पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं, वो कुशल से है ना। हरे सुतस्तेन सदृक्ष सदृश, साक्षात कृष्ण के समान दिखते थे। साधु का मतलब कभी कभी अच्छा होता है, कुशल होता है, कभी कभी स्वभाव के विषय में साधु कहते हैं। गुहम माने स्वामी कार्तिकेयम, देवताओं के सेनापति थे कार्तिकेय जी। अग्रे पूर्व जन्मनी यो भवान्या गर्भे धृतस्तम, इसके पहले वे भवानी इनके गर्भ से जन्म लिए थे, वह सांब कुशल से है ना। सांब जी जाम्बवती के पुत्र थे, और इनका विवाह दुर्योधन की पुत्री से हुआ था। एक बार हस्तिनापुर में चले गए थे, ऐसे घूमते हुए संबंध था ही, तो वहां लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, उसके दुर्योधन की बेटी का, तो शाम स्वयंवर के उद्देश्य नहीं गए थे, स्वयंवर चल रहा था, स्वयंवर सभा में चले गए तमाशा देखने के लिए। स्वयं श्री कृष्ण जैसा सौंदर्य, एकदम तेजस्वी, उस राजाओं के समाज में सबसे सुंदर श्याम जी दिख रहे थे। तो लक्ष्मण वरमाला उठाई, इतना सुंदर पुरुष उपलब्ध है, डाल दी वरमाला। तो दुर्योधन कहा, मूर्खे तुमको पता है ये कृष्ण का पुत्र है, इसके साथ विवाह नहीं करना है, क्योंकि वो स्वाभाविक कृष्ण से चिढ़ता था, क्योंकि कृष्ण को जानता था कि पांडवों के पक्षधर है। संबंध पहले से था, उसी परिवार की कुंती थी और इस परिवार की रोहिणी बलराम की माँ, संबंध पुराना था पांडवों में और कौरवों में, सॉरी जादवों में और कौरवों में पुराना संबंध था। तो एक ही परिवार में कई संबंध पहले से है तो फिर दोबारा नहीं लोग चाहते। और दूसरी बात कि दुर्योधन कृष्ण से जलता रहता था, वो कृष्ण के पुत्र से अपनी बेटी का विवाह करना नहीं चाहता था, तो मना किया, कहा कि चलो ये अज्ञान बस वरमाला डाल दी, नहीं पहचान पाई कि कौन है, तो फिर से दोबारा स्वयंवर होगा, फिर से इसको चांस दिया जाएगा। तो श्याम जी कहे, अच्छा क्या समझते हो, रोड पर घूमने वाला कोई बेगर, अगर यह ज्योति मुझको प्रसन्न करके वरमाला डाली है तो मैं अपने पुरुषार्थ से इसका पाणी ग्रहण करूंगा और समस्त कुरुवंशियों को चुनौती के साथ मैं अपने पत्नी को स्वीकार कर रहा हूँ। हाथ पकड़े और रथ पर बिठाने का कोशिश किए, लेकिन भयंकर युद्ध हो गया, इतना विशाल युद्ध हुआ भागवत में वर्णन है कि अकेले शाम पूरी कौरव सेनाओं को पराजित करने लगे। अंततः युद्ध करते करते कर्ण उनको पकड़ लिया। उस समय यहां तक कि पांडव लोग भी न्यूट्रल थे, शाम के पक्ष में नहीं थे, दुर्योधन जैसा चाहे वैसा करे, कुछ बोल नहीं रहे थे महाराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम, कुछ शाम के तरफ से पक्षपात नहीं किया, कुछ नहीं किए। और जब शाम को पकड़ लिया कर्ण और पकड़ करके अरेस्ट कर लिया तो शाम को जेल में बंद कर दिया गया। और इधर द्वारिका में बीतने लगा समय, महीना दो महीना से कुछ पता नहीं शाम कहाँ गया है, तो पता चला हस्तिनापुर गया है। लेकिन देवर्षि नारद एक दिन बीच में आए और बताए कि शाम हस्तिनापुर में तो जरूर है लेकिन जेल में है। जेल में सारे जादो लोग एकदम बौखला गए, जेल में कैसे? तो लक्ष्मणा के स्वयंवर में दुर्योधन की बेटी इनको वरमाला डाली, लेकिन दुर्योधन रिजेक्ट कर दिया, इसके कारण वो अरेस्ट कर लिया। तब जादों की सेना सजी कि चलकर कौरवों से युद्ध करेंगे और शाम को छुड़ाएंगे और अपनी पुत्र वधु लक्ष्मणा के साथ लेकर आएंगे। लेकिन बलराम जी ननिहाल से झगड़ा नहीं चाहते थे। तो बलराम जी कहे कि नहीं, कृष्ण को तो जाना ही नहीं है, मैं इस ग्रुप का नेतृत्व करूंगा और एक अक्षौणी सेना चलेगी, ज्यादा नहीं। और उद्धव को ले गए, जो अच्छे अच्छे समझदार व्यक्ति थे उनको लेकर बलराम जी गए। उनका उनकी इच्छा थी कि युद्ध नहीं करना है, तो उद्धव को भेजे कि जाओ कौरव सभा में सूचना दो कि बलराम जी एक अक्षौणी सेना के साथ शाम को छुड़ाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो उद्धव जी जाकर सूचना दिए बलराम जी के कहने से, तो फिर बलराम जी का स्वागत किया गया। बलराम बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सभ्य समाज के अगुआ माने जाते थे, तो इनके स्वागत में भीष्म पितामह, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सब पांडव, दुर्योधन तो चेला ही था बलराम जी का, तो सब लोग स्वागत किए बड़े आदर के साथ। कौरव सभा में अगवानी के साथ बलराम जी को लाया गया। तो बलराम जी कौरव सभा में पहुंचने के बाद प्रस्ताव रखे, कहे कि मैं महाराज उग्रसेन का दूत बनकर आया हूं, जादवपति महाराज उग्रसेन का संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। तो सब लोग सुन रहे थे, महाराज उग्रसेन की आज्ञा है कि आप हमारी पुत्र वधू लक्ष्मणा के साथ शाम को सम्मान पूर्वक विदा किया जाए, जिनको आप कारागृह में अरेस्ट किए हो उनको निकालो और दहेज के साथ विदा करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी इनको पति के रूप में चाही है, इसलिए इज्जत के साथ विदा करो। दुर्योधन तो बिल्कुल भूल गया, बिल्कुल इतना सुनते ही वो पागल हो गया, एकदम भूल गया कि बलराम जी हैं और बलराम जी प्रस्ताव लेकर पढ़ रहे हैं। जो अवस्था संधि दूत बनकर कृष्ण के सामने दुर्योधन की हुई, वही अवस्था बलराम जी के सामने हो गई। एकदम दुर्योधन खड़ा हुआ, कहता छी छी धिक्कार है इन जादवों को, ये पैर में रहने वाले जूती सिर पर चढ़ने लगे। महाराज जजाति ने हम पूर्ववंशियों को राजा बनाया, हमारे पूर्वज पूर्व महाराज राजा हुए और उनके अधीनस्थ ये जादव हैं, जदू हैं, ये हमारे अधीन रहने वाले हैं, हम लोगों ने सम्मान किया, अपना वैवाहिक संबंध इन परिवार के साथ किया, इसका अर्थ यह है कि जूती पैर में रहने वाली जूती सिर पर चढ़ जाए, इतना हिम्मत इन जादवों की हमारी बेटी को स्वीकार करेंगे? हमारे सामने नीचे बैठने वाले जादव आज इस तरह आज्ञा देने लगा उग्रसेन, उसको शर्म नहीं आई कि हमको आज्ञा दे रहा है? कभी ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी बेटी को शाम को हाथ नहीं दे सकते। भगवान बलराम एकदम सहते सहते एकदम असह्य हो गया और एकदम क्रोध में भर गए। कहे अच्छा, जिनकी आराधना भगवान शिव ब्रह्मा महारानी लक्ष्मी और स्वयं मैं दिन रात जिनके चरणों की आराधना करते हैं, उस कृष्ण को राज सिंहासन का अधिकार नहीं? वो तुम्हारे पैरों की जूती हैं, उनके बेटे को तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं? अरे नीच, मैं अभी बताता हूं जादवों का बल। ऐसे तो मैं युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी तुमको बताता हूं। भगवान बलराम अपना हल बढ़ाए और पूरे हस्तिनापुर को हल पर उठा लिए, अभी एक मिनट में इसको डुबाता हूं गंगा में। जब भूकंप आ गया, सारा भवन मकान हिलने लगा, सब लोग उनके चरणों में आ गए, भगवान रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह उसी सभा में थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। दुर्योधन इतना उदंड था, किसी का सुनता ही नहीं था। महाराज युधिष्ठिर भी थे, सब लोग दौड़कर बलराम जी के चरण पकड़ लिए और कहे कि हे प्रभु रक्षा कीजिए, मूर्ख है, अज्ञानी है। दुर्योधन स्वयं कांप रहा था, तब कहे कि अब सम्मान के साथ विदा करो, निकालो शाम को। और शाम को लक्ष्मणा के साथ काफी दहेज के साथ विदा किया गया। तो इस तरह वो है श्याम जी। तो इस प्रकार उस श्याम कुशल से है ना, महारथियों के नायक श्याम कह रहे हैं, रथी नाम अग्रगणी श्याम कचित साधु आस्ते, वो कुशल से है ना। इसके बाद सात्यकी के विषय में, युयुधान जिनका नाम है सात्यकी, सात्यकी की विशेषताओं का वर्णन सुनिए। सात्यकी भगवान का बॉडीगार्ड, यद्यपि भगवान को बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, फिर भी सात्यकी साथ साथ रहते थे कृष्ण के, और उनकी दो विशेषताओं को बतलाते हुए उनका कुशल पूछ रहे हैं। क्षेमं सकश्चेद् युयुधान आस्ते, यह फाल्गुना लब्ध धनु रहस्य, लेम्भेन जसाधो क्षजसे वयैव, गतिम तदीयाम यति भी दुरापम। यह फाल्गुनात लब्ध धनु रहस्य अधोक्षज सेवया एव अंजसा यत भी दुरापम गतियम, सॉरी, यह फाल्गुनात लब्ध धनु रहस्य, जो अर्जुन से युद्ध विद्या प्राप्त किए थे, एक विशेषता एक युधान सात्विकी जी अर्जुन के शिष्य थे, और दूसरी विशेषता है कि अधोक्षज सेवया एवं अंजसा यदि भी दुराया दुरापाम तदीयम गति लेभे। जतियों की गति प्राप्त किए थे, भगवान की सेवा को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिए थे। सन्यासियों के भी दुर्लभ भगवान अधोक्षज के पार्षद रूपा गति प्राप्त किए थे, भगवान के साथ साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। स युधान कचित क्षेमम आस्ते, वे सात्विकी कुशल से है ना, युधान सात्विकी का ही नाम है, सात्विकी युधान दोनों एक नाम है। इस श्लोक में विशेष बात यह है कि इनको अधोक्षज सेवया एवं अंजसा, कृष्ण के सेवा से अनयास यति भी दुरापम तदीयम गति लेभे। इस जोगियों के जतियों के सन्यासियों के जो लक्ष्य हैं भगवान अधोक्षज उनकी सेवाएं प्राप्त कर लिए थे। अच्छा, भगवान के विशेष नाम यहाँ बोल रहे हैं अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ है जो अप्राकृत चिन्मय स्वरूप है, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा जो अग्राह्य हैं। भगवान के अप्राकृत नित्य धाम में उनके नित्य सेवा में नियोजित परिकरों का जो पद है वह पद भागवती गति या तदीया गति कहलाती है। भागवती गति या तदीया गति या पार्षद रूपा गति उसको कहते हैं। सन्यासीगण संसारिक संबंध को त्याग कर पारिवारिक स्त्री पुत्र मित्र गृह धन संपत्ति पद पोजीशन सब कुछ छोड़कर मायातीत ब्रह्म सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु अधोक्षज सुख ब्रह्म सुख से भी परे है, सन्यासियों के गति से भी बढ़कर है। भगवान की व्यक्तिगत सेवा का सुख अधोक्षज सुख कहलाता है। बड़े बड़े निर्विशेषवादी दार्शनिक मीमांसा द्वारा ब्रह्म के निर्विशेष प्रकाश का साक्षात्कार कर उसी को बड़ा सुख मान लिया जाता है, परंतु परब्रह्म भगवान अपनी हलादनी शक्ति के द्वारा अनिर्वचनीय अद्भुत सुख का अनुभव कराते हैं अपने भक्तों को। भक्तों के हृदय में हलादनी शक्ति की वृत्ति भक्ति है, वह अद्भुत सुख प्रदान करती है। अद्भुत भक्तों के हृदय में भगवान के गुण रूप लीला माधुरी का जो सुख प्राप्त होता है वह सभी गति से बढ़कर है, सभी प्रकार की गतियों से। और वह भक्तों के हृदय में भगवान प्रदान करते हैं, भक्त लोग सुख पूर्वक उसका स्वादन करते हैं। भक्ति से भगवान भी परम सुख का अनुभव करते हैं, तो भक्ति के आश्रय से भक्त भी उस सुख में सराबोर रहता है। यहां तक कि भगवान से भी ज्यादा सुखी भक्त लोग रहते हैं। अष्टांग योग का अनुष्ठान से यह सुख नहीं मिलता, या बड़े बड़े ज्ञान अभ्यास से यह सुख संभव नहीं है। तो सात्विकी लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से कृतार्थ हो चुके थे। अद्भुत इनकी स्थिति है। लौकिक दृष्टि से क्षत्रिय और जगत श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के शिष्य थे, बहुत बड़े व्यक्ति के शिष्य थे, अर्जुन इनके गुरु थे। और पारलौकिक दृष्टि से अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे डायरेक्ट श्री कृष्ण की। अधोक्षज का साक्षात पार्षदत्व प्राप्त किए थे। तो ऐसे सात्विकी कुशल से है ना, अच्छा, अब अक्रूर जी के विषय में पूछते हैं। कोई क्रम नहीं है, कभी किसी के कभी किसी के विषय में पूछ रहे हैं। तो अक्रूर जी के विषय में प्रश्न करते हुए कहते हैं, कचित बुध स्वस्तयन मीव आस्ते स्वफल कपुत्र भगवत प्रपन्न यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशु। क्वचित बुध स्वस्तन्मीव आस्ते स्वफल कपुत्र भगवत प्रपन्न यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशु अचेष्टतः प्रेम विभिन्न धैर्य। तते अन्मीव बुध भगवत प्रपन्न स्वफल कपुत्र क्वचित स्वस्ति आस्ते। तते निष्पाप विद्वान भगवत नुरागी सफल कनंदन अक्रूर जी सुख से है ना। अक्रूर जी के विषय में कई विशेषता बतला रहे हैं, निष्पाप है और बुद्धिमान है, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, ऐसे अक्रूर कुशल से है ना। इनकी विशेष विशेषता क्या है? यह कृष्ण पादांग कितमार्ग पांशुसु प्रेम विभिन्न धैर्य अचेष्टता। जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हित पथ में कूद गए, लौटने लगे और लौटते लौटते अतिशय प्रेम के अधीर होकर जो ब्रजरज के चरण चिन्ह को पंकिल कर दिए, इतने आंसू बहाए कि वो धूल कीचड़ हो गया, इतना रोए और इतना लौटे, वह अक्रूर कुशल से है ना। जब अक्रूर जी कंस के प्रेरणा से नंदगांव जा रहे थे कृष्ण बलराम को लाने के लिए, तो नंदगांव के निकट पहुंचे तो कृष्ण का चरण चिन्ह धूल में दिखाई दिया, अपने रथ से कूद पड़े, प्रेम विवस्ता से लौटने लगे। अक्रूर जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा कि उस दशा में यह भी अनुसंधान नहीं कर पाए कि मैं कंस का राजमंत्री हूँ, आयु और नाता में कृष्ण से बड़ा हूँ, उसका चाचा लगूंगा और मेरा भतीजा है। एक गोप कुमार के चरण धूलि में लौटने का संवाद जब कंस को मिलेगा तो नाराज हो सकता है, कुछ नहीं समझ पाए। प्रेम विभिन्न धैर्य, कृष्ण चरण धूलि में लौटने का एकमात्र कारण था प्रेमोच्छ्वास, प्रेम के अधिकता के कारण कुछ भी विचार नहीं कर पाए। अक्रूर के मन में कोई भय नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, दंभ नहीं, शोक नहीं। बहुत उच्च कोटि के भक्तों में इस प्रकार का प्रेम विकार होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में इस समस्त प्रेम विकार देखे गए। महाप्रभु रोने लगते थे तो पिचकारी जैसे आंसू निकलते थे, इनके रोंगटे खड़े होते थे तो कटहल के फल जैसा मांस खींच जाता था और इनके हाथ के जोड़ खुल जाते थे, लंबा लंबा हाथ हो जाते थे। इस प्रकार प्रेम की विकृति होती है। तो अक्रूर जी के विषय में विशेष विशेषता का स्मरण करते हुए पूछ रहे, कुशल से है ना। क्वचित शिवम देवक भोज पुत्रा विष्णु प्रजाया इव देव मातु या वैश्व गर्भेण दधार देवम तई दशा यज्ञ वितानमर्थम। देवकी जी के विषय में पूछ रहे हैं, वसुदेव जी के विषय में बहुत पहले पूछे, अब देवकी के विषय में इनको याद आया। कह रहे हैं जो वेद यज्ञ विस्तार रूप अर्थ जिस प्रकार धारण करता है उसी प्रकार अपने गर्भ में भगवान कृष्ण को जो धारण की, जो देव माता अदिति जैसी कृष्ण माता देवकी कुशल से है ना, जो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त की वो देवकी कुशल से है। उपमा दे रहे हैं कि जैसे देव मातु इव देव भोज पुत्रा देव क्या कचित शिवम आस्ते, देव माता अदिति जैसे भगवान उपेंद्र को, भगवान वामन देव को अपना पुत्र बनाई, उसी प्रकार देवकी श्री कृष्ण को अपना पुत्र बनाई, श्री भगवान को, कुशल से है ना। देवकी की सबसे बड़ी विशेषता बतला रहे हैं कि भगवान की माँ है। अपने तपस्या से, अपने साधना से भगवान को अपना पुत्र बनाई। इसके बाद अब दो श्लोक में और पूछ रहे हैं, अनिरुद्ध जी के विषय में पूछते हैं। प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध एक भी भगवत स्वरूप है। चतुर्व्यूह के अंदर वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। अपि सुदास्ते भगवान सुखम योह यह सात्वता काम दुघो निरुद्ध यमा मनन्ति स्महि शब्द जोनिम मनोमयम सत्व तुरीय तत्वम। जिनको मन का प्रवर्तक, शब्द का कारण और शास्त्र का प्रवर्तक, अंतःकरण चतुर्थ अधिदैव कहा जाता है, और उपासकों जादवों के कामना पूरक भगवान अनिरुद्ध क्या सुख से हैं? भगवान अनिरुद्ध अपिश्चित सुखम आस्ते, भगवान अनिरुद्ध कुशल से है ना। उनकी विशेषता बतला रहे हैं कि वे मन के प्रवर्तक हैं। यम मनोमयम शब्द जोनिम सत्व तुरीय तत्वम आमनंतिस्म ही वह सात्वताम काम दुघ भगवान अनिरुद्ध अपिश्वित सुखम आस्ते। अनिरुद्ध जी की विशेषता है कि वे मन के प्रवर्तक हैं। अंतःकरण चतुष्टय में मन होता है। चतुष्टय जो अंतःकरण है उसमें चार है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित। तो चित, अहंकार, बुद्धि और मन ये चार अंतःकरण माने गए हैं। इन चारों के नियामक देवता क्रमशः चित के वासुदेव, अहंकार के संकर्षण, बुद्धि के प्रद्युम्न और मन के अनिरुद्ध है। अंतः चतुष्टय के अधिदेवता है। इसी से अनिरुद्ध को मनोमय चतुर्थ अधिदैव कहा गया इस श्लोक में। यम मनोमयम, मनोमयम, तो ये अनिरुद्ध ही वेद शास्त्र के मूल प्रवर्तक माने जाते हैं, और ब्रह्मा की सृष्टि इन्हीं की कृपा से होती है। स्वयं भगवान कृष्ण के द्वितीय विलास हैं श्री बलराम। बलराम से आदि चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध प्रकट होते हैं। ये सभी विष्णु तत्व हैं। श्री रामचंद्र वासुदेव हैं और अन्य भ्राता संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। कहा जाता है कि वह चतुष्टय चतुर्व्यूह ही दशरथ के पुत्र के रूप में आए। वासुदेव श्री राम के रूप में, संकर्षण लक्ष्मण के रूप में, प्रद्युम्न भरत के रूप में और अनिरुद्ध शत्रुघ्न के रूप में। तो ये महाविष्णु, अनिरुद्ध से महाविष्णु प्रकट होते हैं, जिनके श्वास से वेद प्रकट होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में अनिरुद्ध उनके पौत्र बने। सारे स्वरूप भगवान के अवतार के समय प्रकट हुए, इसलिए इनको मनोमयम शब्द जोनिम सत्य तुरीय तत्वम कहा गया है। वो कुशल से है ना, सबकी विशेषता बताते हुए कहते हैं। अब जादवों के विषय में अंतिम प्रश्न। अपि स्विदन्ये च निजात्म दैवम अनन्य वृत्त्या समनुव्रता जे हृदय सत्यात्मज चारु देशना गदा दया स्वस्ति चरन्ति सौम्य। हे सौम्य, हे उद्धव जी, ये अन्य अन्य लोग गदा दया अत हृदय के सत्य भामा चारुदेशन गद आदि जो कृष्ण पुत्र हैं, अनन्य भाव से कृष्ण के अनुगामी थे, वे कुशल से हैं ना। प्रद्युम्न को तो पूछ लिए, शाम को पूछ लिए, लेकिन और रानियों के भी पुत्र थे ना, तो एक श्लोक में सबका पूछना है। हृदिक सत्यात्म चारु देशना गदादया, अने हृदिक सत्यभामा का चारु देशन गद आदि जितने भी कृष्ण के पुत्र थे सब कृष्ण के अनुगामी थे अनन्य भाव से, सब कुशल से है ना। ऐसे तो सबका कुशल अपने आप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निजस्यात मनो दैवम मूर्तम भाग्यमिव श्री कृष्णम सम्यक अनुव्रता अनुसृता। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सभी कृष्ण के अनुगामी थे, सभी सकुशल थे, फिर भी निजात्म दैवम अपने मूर्तिमान भाग के बल से वे कृष्ण के सम्यक रूप से एकांत भाव से अनुसरण करते थे। कृष्ण के पुत्रत्व प्राप्ति ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, कृष्ण का बेटा बनना। वे कुशल से है ना, वो तो कुशल से है ही, लेकिन प्रेमाधिक्य के कारण पूछ रहे हैं। सब लोग कुशल से है ना। तो इस प्रकार जादवों के समाचार पूछने के बाद फिर अब कौरवों के समाचार पूछेंगे, पांडवों के। तो इसके पहले थोड़ा सा कीर्तन, कहाँ गए कीर्तनिया लोग। अपि स्वदर्भ्याम विजय च्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपाति से तुम दुर्योधनो तप्यत यत् सभायाम सम्राज लक्ष्म्य विजयानुवृत्त्या। अब विदुर जी पांडवों का कुशल पूछ रहे हैं। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर का, यत् सभायाम विजयानुवृत्त्याम सम्राज लक्ष्म्य दुर्योधन अतप्यत। तो जिनकी मयकृत सभा में अर्जुन द्वारा प्राप्त राजश्री से दुर्योधन लेने के लिए संतप्त हो गया, एकदम लोभ उत्पन्न हो गया कि यह राज लक्ष्मी मुझे चाहिए, तो यत् सभायाम विजया अनुवृत्त्या सम्राज लक्ष्म्या, जिनकी राजसभा अर्जुन के द्वारा प्राप्त की गई थी, मैदानों को परास्त करके अर्जुन प्राप्त किए थे वो सभा, जिसको देखकर दुर्योधन बहुत लोभ में पड़ गया था। महाभारत के सब कथाएं हैं, एक एक कथाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसको कहने में बहुत समय लगता है, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन करेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर के गुणों का स्मरण करते हुए उनका कुशल पूछ रहे हैं कि जो अपने पुरुषार्थ से, अपने भाई अर्जुन और भीमसेन के पुरुषार्थ से जो राजश्री प्राप्त किए थे, धर्म से जिसको प्राप्त किए थे, अधर्म से नहीं, धर्मेण धर्म परिपाति से तुम, धर्म नीति के अनुसार जो वेद की मर्यादा को पालन कर रहे थे, वे महाराज युधिष्ठिर धर्म सदौरभ्याम, वे महाराज युधिष्ठिर धर्म के साथ राज्य का पालन कर रहे थे। और जिनकी भुजाएं क्या है, तो कहते हैं स्वदौरभ्याम विजय अच्युताभ्याम, विजय अर्जुन और अच्युत माने श्री कृष्ण, जिनके बाएं दाएं भुजा थे अर्जुन और श्री कृष्ण, ऐसे भुजाओं से जो सुरक्षित राज्य साम्राज्य प्राप्त किए थे महाराज युधिष्ठिर, वह पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लिए ना, कुशल से है ना। महाराज युधिष्ठिर वास्तव में मूर्तिमान धर्म थे, साक्षात धर्मराज। श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से जब वे राज शासन कर रहे थे, तो उनका राज वैभव स्वर्ग से भी बढ़कर था। उनकी वास्तविक भुजा श्री कृष्ण और अर्जुन थे, उनके भुजाओं से सुरक्षित उनके साम्राज्य था। उनके साम्राज्य वैभव को देखकर दुर्योधन बहुत जलता था। महाराज युधिष्ठिर को संकट में डालकर राज हड़पने की उसकी तीव्र इच्छा थी, बहुत कोशिश किया। इसमें अंतिम उपाय था महाभारत युद्ध, बहुत कोशिश, जुआ में हराना, वनवास में भेजना, लक्षा भवन में जलाने का कोशिश करना, बार बार कोशिश किया कि उनको किसी तरह डाउन करके हम राज ले लें। महाभारत युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर पुनः अपने राज्य को पा लिए और धर्म न्याय का पुनः बोलबाला हो गया। महाराज युधिष्ठिर जैसे धार्मिक राजा के राज्य की निश्चित ही ऐसी शोभा होती है। उनके विषय में पूछ रहे हैं कि वो महाराज युधिष्ठिर ठीक से है ना, कुशल से है ना, अर्थात वो जैसे पहले राज्य प्राप्त किए थे वैसे सुख पूर्वक राज्य प्राप्त करके प्रजा का पालन कर रहे हैं ना। एक बार महाराज युधिष्ठिर को संपूर्ण हस्तिनापुर का राज दे दिया गया था। जब द्रौपदी को जीत करके ये लोग लौटे थे लक्षा भवन से निकलने के बाद पता चला कि ये लोग पांडव जीवित हैं और द्रुपद महाराज के स्वयंवर में उनकी पुत्री द्रौपदी को प्राप्त किए हैं, तो उस समय धृतराष्ट्र एकदम डर गया। बाप रे, अभी जीवित हैं और इतने बड़ा स्वयंवर जीते। तो उस समय सभी साधु महात्मा महर्षि धौम व्यास द्रोणाचार्य कृपाचार्य और साथ ही कृष्ण बलराम आदि सभी मिलकर धृतराष्ट्र को समझाए और एक बार धृतराष्ट्र तो अपना राज मुकुट महाराज युधिष्ठिर को दे ही दिया, राजा बना दिया। लेकिन दुर्योधन उसको नहीं सह पाया, बहुत दिक्कत में पड़ गया। और उस समय द्रौपदी विजय ही सब कुछ नहीं था, इसके साथ अर्जुन बहुत सारे पुरुषार्थ प्राप्त किए थे, देवताओं को पराजित करके, देवताओं को प्रसन्न करके बहुत से हथियार प्राप्त किए थे, राज वैभव प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से खांडव वन जला करके मय दानों को अपने वश में किए थे। मय दानों महाराज युधिष्ठिर के लिए एक बहुत सुंदर सभा का निर्माण किया था और इसके साथ ही महाराज युधिष्ठिर अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए राष्ट्रीय जग किए। तो उनके निरंतर बढ़ते हुए ऐश्वर्य को दुर्योधन सह नहीं पाया, एकदम डिस्टर्ब हो गया। तो फिर प्रयास किया कि उनको फिर डाउन किया जाए। जैसे तैसे अपने पिता से कहकर उस राज को दो भागों में बंटवा दिया, हस्तिनापुर अलग और उसके उससे अलग एक भिन्न राज की कल्पना किया, खांडव प्रस्थ, जिसको भगवान कृष्ण की सहायता से इंद्र प्रस्थ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो आज वर्तमान दिल्ली है। खांडव प्रस्थ जंगल पहाड़ नदियों से भरा हुआ वो प्रदेश था जिसको भगवान इंद्र के स्वर्ग जैसा सजवा दिए, इसलिए उसको इंद्र प्रस्थ कहा गया। तो इस प्रकार निरंतर तंग करता था, कुछ न कुछ उपाय करता था। जब इंद्र प्रस्थ में सुख पूर्वक रहने लगे तो फिर धृतराष्ट्र आमंत्रित किया जुआ के लिए और जुआ में हरा करके वनवास भेज दिया गया। वनवास के बाद अब कोई विकल्प नहीं बचा बस महाभारत के अलावा। तो अंतिम उपाय था पांडवों को तंग करने का महाभारत। तो महाभारत का दृश्य विदुर जी अभी नहीं जान पाए हैं, स्पष्ट रूप से नहीं जानते, सुन तो लिए थे लेकिन उद्धव के मुख से सुनना चाहते हैं कि क्या पुनः युधिष्ठिर महाभारत युद्ध जीत कर अपना राज्य प्राप्त कर लिया, जो राज्य अर्जुन और अच्युत श्री कृष्ण के भुजाओं से सुरक्षित थी, अर्थात अर्जुन और कृष्ण जिनके भुजा थे, वह महाराज युधिष्ठिर कुशल पूर्वक राज्य प्राप्त कर लिए ना, यह उनकी जिज्ञासा है। महाराज युधिष्ठिर के विशेष विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है कि वे श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, अर्जुन और कृष्ण जैसे उनके रक्षक हैं। तो इस पर जिज्ञासा करते हैं, विजयस्य सर्वोत्कर्षस्य अनुवृत्ति जस्याम तया। अर्जुन के विशेषता, अर्जुन बहुत बड़े धनुधारी थे और श्री कृष्ण के भक्त थे। तो विजय अच्युताभ्याम अर्जुन कृष्णाभ्याम धर्म मार्गेण धर्मो युधिष्ठिर सेतुम धर्म मर्यादम परिपाति। अर्जुन और कृष्ण की सहायता से धर्म मर्यादा का ठीक से पालन महाराज युधिष्ठिर कर रहे हैं ना, ये जिज्ञासा है। इसके बाद अब भीमसेन के विषय में पूछते हैं। किम वा कृताघे स्वघमात्यमर्षि भीमो अहिवद दीर्घतमं व्यमुंचत जस्रां यस्यांघ्रिपातं रणभूनसेः मार्गं गदाया चरतो विचित्रम्। भीमसेन के विशेष विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो गदा युद्ध में बहुत निपुण थे, विविध प्रकार के पैतरे बदल कर गदा युद्ध करते थे, और जिनके पदाघात से पृथ्वी कांप जाती थी, भूकंप आ जाता था, रणभूमि उनके पदाघात को नहीं सह पाती थी। जब भीमसेन गदा लेकर किसी शत्रु के तरफ दौड़ते थे भयंकर अट्ठास गर्जन के साथ, तो पृथ्वी हिल जाती थी, भूकंप आ जाता था, और जो एक विषैले सर्प की तरह क्रोध संचित किए हुए फुफकार छोड़ा करते थे, दीर्घ संचित क्रोध वे शत्रुओं पर छोड़े कि नहीं। अहिवत अहि अमर्षि भीम कृताघेषु दीर्घतमम अघम व्यमुंचत किम वा, कहते हैं वह विषधर नाग के समान अति क्रोधित भीमसेन कौरवों द्वारा किए गए अपराध के लिए जो दीर्घ काल तक संचित क्रोध अपने पास रखा है, उसको छोड़ा कि नहीं। बात बात में भीमसेन प्रतिज्ञा कर लेते थे कौरवों के प्रति, अनेक समय प्रतिज्ञा किए थे, क्या वो प्रतिज्ञा पूरा किए? विदुर जी भीमसेन के पराक्रम को जानते थे कि भीम के पदाघात से युद्ध भूमि कांप जाती थी, गदा संचालन देकर वीरों का हृदय कांप जाता था, अतुल बलशाली होने पर भी बहुत वर्षों तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं किए थे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में थे। महाराज युधिष्ठिर उनको समझाते थे, भीमसेन शांत 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 रहो। तो भीमसेन क्रोध में भर जाते थे, शांत, इस दुष्ट दुर्योधन को क्षमा करेंगे? कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। कहते महाराज युधिष्ठिर समझाते थे कि देखो भैया, दुर्योधन यदि हस्तिनापुर का राज सिंहासन चाहता है तो यह उचित है, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि हस्तिनापुर के राजा महाराज धृतराष्ट्र हैं। जन्मांध होने के कारण उनको राज सिंहासन नहीं प्राप्त हो सका, तो उनकी इच्छा है कि हमारा बेटा राज सिंहासन का उत्तराधिकारी हो, तो इसमें क्या अनुचित है? वो उचित चाह रहे हैं, और दुर्योधन उस राज सिंहासन की कामना करता है, ये भी उचित है, क्योंकि उसके पिता का राज सिंहासन है। इसलिए दुर्योधन को दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर नहीं कहते थे, सुयोधन कहते थे हमेशा। सुयोधन की इच्छा है राज सिंहासन प्राप्त करना, तो ये अनुचित नहीं है भीमसेन, आप उसके प्रति हमेशा क्रोध बनाकर मत रखा करो, समझाते थे। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब दुर्योधन घोषणा किया कि द्रौपदी को नग्न करके मेरे जांग पर बिठा दो, तो भीमसेन खड़ा हो गए, महाराज युधिष्ठिर पकड़ने लगे, चुप बोलो मत, बोलो मत, फिर भी भीमसेन बोले, कहे अरे दुष्ट दुर्योधन, तुम्हारे जांग पर द्रौपदी नहीं भीमसेन का गदा बैठेगा। फिर महाराज युधिष्ठिर कहे चुप रहो, हम लोगों का अधिकार नहीं है कुछ बोलने का, तो महाराज को भी डांट देते थे। भीमसेन इतना क्रोधी थे, एकदम भयंकर गेहुअन सांप की तरह फुफकार मारते थे, चिर संचित क्रोध अभी छोड़े कि नहीं। कई बार प्रतिज्ञा किए, धृतराष्ट्र को सुनाकर एक बार प्रतिज्ञा किए, अरे अंधा धृतराष्ट्र, तुम्हारे 100 पुत्रों को अकेले भीमसेन मारेगा। तो इस तरह से बार बार फुफकार मारते थे, उनको लक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, ये भीमसेन को असह्य हो गया था कि इस तरह से धोखा से सोए अवस्था में जलाने की योजना, भीमसेन को विष दिया गया था उसको याद कर रहे थे, बार बार उनके मन में बातें गूंज रही थी। तो विदुर जी सबको जानते थे कि अतुल बलशाली होने पर भी बहुत वर्षों तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं किए, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर उनको समझाते रहते थे। तो भीमसेन एक महाविषधर नाग की तरह है, अपने संचित क्रोध को अभी तक नहीं छोड़ा, और क्रोध विष के समान होता है, वो छोड़ेगा जब अपने विष को तो निश्चित रूप से घातक होगा। जब गेहुअन सांप अपने चिर संचित क्रोध से किसी को डसता है तो इतना अधिक विष संचारित करता है कि उसकी चिकित्सा असंभव हो जाती है। वैसे भीमसेन जब अपना विष छोड़ेगा अपना क्रोध, तो निश्चित रूप से कौरवों की चिकित्सा संभव नहीं है, निश्चित मारे जाएंगे। उनके मन में कौतूहल था कि वे दुष्ट लोग मरे कि अब तक बचे हुए हैं, तो इस प्रकार अपराधी कौरवों के प्रति विष के समान विनाश करने वाला अपना क्रोध बहुत काल तक संचित किया हुआ भीमसेन अब तक छोड़ा कि नहीं, यह प्रश्न है। यह है भीमसेन की विशेषता के साथ भीमसेन का कुशल पूछना। भीमसेन की कुशलता इसी में है कि वह अपना क्रोध छोड़ दे, जो कई बार प्रतिज्ञा किया उसको पूरा कर दे। इसके बाद अर्जुन का कुशल पूछते हैं, अर्जुन की भी विशेषता बताते हुए। कचेद जसोधा रथ जूथ पानम गांडी व धन्नो पर तारी रास्ते अलक्षितो यक्षर कूट गूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुतो सह। जिनके बाण जाल से आच्छन्न प्रच्छन्न कपट किरात वेशधारी भगवान शिव संतुष्ट हो गए थे, वह महारथियों के बीच कीर्तिधारी अजय विजेता गांडीव धनुष धारण करने वाला अर्जुन कुशल से है ना। अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता बतला रहे हैं कि वह अजय विजेता है। यहां तक रथ जूथ पानम, जितने महारथी हैं उसमें सबसे बड़ा यशस्वी जसोधा, सबसे बड़ा रथी, महाजशस्वी महारथी अति रथी अर्जुन कुशल से है ना। और उनके वीरता की गाथा गाते हुए विदुर जी कहते हैं कि जो भगवान शिव को संतुष्ट कर दिए थे युद्ध में। एक बार भगवान शिव के मन में आया कि चारों तरफ अर्जुन 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 चर्चा हो रहा है, कितना बड़ा बलवान है भाई, थोड़ा हम भी उसके बल को अजमाते हैं। तो भगवान शिव एक विशेष लीला किए, किरात का रूप धारण कर लिए। किरात जंगल में रहने वाली एक जाति है, किरात हुणिंद, किरात हुण, पुलिंद, पुलकस, ये सब जाति होते हैं जंगल में, एकदम इंटीरियर जाति, कोई पढ़ाई लिखाई, कोई शिक्षा नहीं, खान पान का कोई निश्चित नहीं, कुछ भी खाते हैं, सब मांसाहारी होते हैं। ऐसे किरात वेश में एकदम जंगली यानी मनुष्य की ही जाति है, किरात हूण, पुलिंद, पुलकस, चवन, कंक, ये सब, तो उसमें एक किरात का रूप धारण किए, एक जंगली आदिवासी जीव मनुष्य का, और शिकारी वेश में धनुष लेकर के एक सुअर का पीछा किए सुअर को मारने के लिए, और उसी जंगल में अर्जुन थे। ये नेपाल में वो जंगल है आज भी, तो वहां पर जहां भगवान पशुपति नाथ है उनके बगल में वो जंगल है, तो वहां पर अर्जुन वनवास काल में घूम रहे थे और अपना गांडीव धारण किए हुए, तब तक वो सुअर भागता हुआ छटपटाता हुआ अर्जुन के पास आ गया, जिसका पीछा भगवान शिव किए थे। तो अर्जुन शिव के लक्ष्य उस सुअर की रक्षा करना चाहे, उसको बचाना चाहे, तब तक वो आ गए भगवान शिव, कहे कि मेरा शिकार है, कहे नहीं नहीं ये तो मेरा है। तो आपस में दो शिकारी दो धनुर्धारी बहस करने लगे, और एक साधारण किरात के वेश में भगवान शिव आए हुए थे, अर्जुन को तो कोई भय नहीं था, चाहे कोई भी आ जाए, अर्जुन पहचान तो नहीं पाए, लेकिन कहे कि तुम ज्यादा बकवास मत करो, हट जाओ यहां से। हट कैसे जाऊं, मेरे हाथ में भी धनुष है, तुम्हारे हाथ में भी धनुष है, ये किसका है इसका फैसला तब होगा जब हम दोनों आपस में युद्ध जीतेंगे, जो जीतेंगे उसका होगा, आओ लड़ लेते हैं। तो अर्जुन को तो हंसी आ गई कि साधारण किरात ये मुझसे लड़ना चाहता है, जिसके भुजाओं के सामने देवता लोग भी कांपते हैं, जिसके गांधीव का टंकार सुनकर बड़े बड़े महारथी अतिरथियों का हृदय भी कांप जाता है, उससे किरात लड़ेगा। लेकिन चुनौती कर दिए, वो तो भगवान शिव थे, अर्जुन पहचान नहीं पाए। अब युद्ध चालू हो गया किरात में और अर्जुन में, इतना भयंकर युद्ध हुआ, सब तरह से भगवान शिव अर्जुन को परास्त करने का चेष्टा किए, भयंकर बाण मारते थे। अर्जुन तो चकित हो जाता है, किरात इतना ट्रेनिंग कहाँ लिया है, किस गुरुकुल में पढ़ा है, क्या हुआ है, फिर भी अर्जुन पहचान नहीं पा रहे थे, लड़ते जा रहे थे, आश्चर्य हो रहा था, बाणों को काट रहे थे, लड़ रहे थे, एकदम अर्जुन की पसीना छूटने लगी, फिर भी अर्जुन को जो अपने गांडीव धारण का अहंकार और गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा पर विश्वास था, दौड़ करके किरात को पकड़ लिए, एकदम दौड़ कर पकड़ लिए और पकड़ करके अरेस्ट करने लगे, कहे बस हो गया तुम्हारा बल, बहुत बहक रहा था मूर्ख कहेगा। जब ही पकड़ कर अर्जुन भगवान शिव को किरात वेश में बांधने की चेष्टा की, अरेस्ट करना चाहे, तेव ही भगवान शिव अपने ओरिजिनल रूप में हो गए। तो जब ओरिजिनल रूप में हो गए तो अर्जुन कह रहे बाप आप महादेव, आपकी कैसे इच्छा हो गई मुझसे युद्ध करने का। फिर अर्जुन तो उनके चरणों में गिर कर प्रणाम करने लगे। तो इस प्रकार भगवान शिव संतुष्ट हो गए अर्जुन की वीरता से, उनके युद्ध कौशल से भगवान शिव प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर वो अपना पाशुपतास्त्र, पशुपति का जो अस्त्र है उसको पाशुपतास्त्र कहते हैं, उसको दिए और आशीर्वाद भी दिए अर्जुन को, कहे बेटा इस अस्त्र का प्रयोग करके तुम किसी को परास्त कर सकते हो, एक अस्त्र से संपूर्ण विश्व को जला सकते हो, और जितने तुम्हारे शत्रु हैं एक अस्त्र में ही मारे जाएंगे एक बार में। तो वो अस्त्र दिए, आशीर्वाद भी दिए, विजयी भव, अजय विजेता भव, बहुत सारे आशीर्वाद दिए, आलिंगन किए, सिर पर हाथ रखे, स्नेह से बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो विदुर जी इस घटना को जानते थे, इसलिए पूछ रहे हैं कि जो अलक्षितो यक्षरकूट वेशो माया किरातो गिरिशः तुतोषः, गिरीश भगवान शिव को जिन्होंने संतुष्ट कर दिया, वो अर्जुन कुशल से है ना, अर्जुन के गांधीव के सामने कोई टिक नहीं पाता था, भगवान शिव भी संतुष्ट हो गए, और इंद्र को भी एक बार अरेस्ट कर लिए थे, खांडव वन जलाते समय इंद्र विरोध किए, खांडव वन इंद्र का स्पेशल वन था और उसमें मय दानव छिप कर रहता था, भगवान को पता था कि इसमें मय दानव है, और एक बार अग्निदेव को कैबजियत हो गया, बहुत हवन हो रहा था, बहुत लोग घी पिला रहे थे, अग्निदेव में हवन कर रहे थे, तो उनका पेट थोड़ा चिकना हो गया, अब कुछ रुखड़ापन चाहते थे, कुछ फाइबर का चीज चाहते थे खाना, तो भगवान से कहे कि कोई व्यवस्था किया जाए, तो कहे कि अब आपको क्या दिया जाए, फाइबर में तो सबसे अच्छा है जंगल लकड़ी काट कुछ सब खाइए, तो कहां प्रचुर जंगल है तो खांडव वन, खांडव को खाइए, जला दिए, खांडव वन में आग लग गया और अग्निदेव एकदम अपने विराट रूप में जंगल को जलाने लगे भगवान शिव के आज्ञा, भगवान कृष्ण के आज्ञा से। अब इंद्र को जब पता चला कि अग्नि पूरा खांडव वन को जला रहा है अग्निदेव, तो विरोध करने आए, तो उस समय अर्जुन साथ थे भगवान के, तो भगवान कहे कि अर्जुन देखना बीच में कभी भी हो सकता है इंद्र विरोध करने आ जाए, तो उसको रोकना चाहिए, पूरा वन जलाना है, भगवान की इच्छा थी कि इस बहाने जंगल तो जलेगा जलेगा ही, लेकिन इसमें जो मय दानव छिपा है वो अगर भीतर रहेगा तो जल कर राख हो जाएगा, नहीं तो निकलेगा तो उसको पकड़ा जाएगा, तो उसी में छिपा रहता था वो मय दानव, बहुत भयंकर असुर था। तो जब आग चारों तरफ लग गई तो मैं दानव निकला, और मैं दानव निकल करके भागने का कोशिश किया, अर्जुन उसको पकड़ लिए। तो अर्जुन के हाथों पकड़ा गया तो मैं दानव एकदम भयभीत होकर अर्जुन के चरण में गिर पड़ा। तो जब चरण में गिर पड़ा तो अर्जुन उसको मारे नहीं, ठीक है तुमको अभय दान करते हैं। तो भगवान कहे अभय दान, इसी दुष्ट के लिए सारी योजना बनी, आप इसको अभय दे रहे हो, इसको तो मारना है। तो अर्जुन कहे नहीं, मेरा शरण लिया है तो चलो। फिर मैं दानों समझौता किया कि अर्जुन आप जो कहोगे वो करूंगा, मैं जीवन भर आपका सेवक रहूंगा। तब भगवान कहे कि एक महाराज युधिष्ठिर के लिए अद्भुत सभा का निर्माण करो, तो वही मैं दानों निर्माण किया था, अब अर्जुन के अधीनस्थ सेवक हो गया मैं दानों। एक घटना तो ये हुई, और उधर इंद्र विरोध करने आ गए, कहे नहीं खांडव वन नहीं जलेगा। तो अर्जुन कहे कि नहीं ऐसे आसानी से तो नहीं रुकेगा, मैं कृष्ण की इच्छा से जला रहा हूं। तो फिर इंद्र युद्ध की अपने देवताओं को लेकर, सारे देव समाज जमकर अर्जुन के साथ युद्ध किया, और सबको हरा करके इंद्र को पकड़ कर अरेस्ट कर दिए, बांध दिए। तो उस समय इंद्र भी संतुष्ट हो गए अर्जुन के वीरता को देखकर। तथ्य तो यह है कि अर्जुन इंद्र का ही पुत्र है, लेकिन युद्ध कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक विषय के लिए जब दो व्यक्ति परस्पर चाहते हैं तो युद्ध हो ही जाती है, चाहे वो अपना सगा भाई हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे जो भी हो। तो बाद में अर्जुन संतुष्ट हुए, और उनके युद्ध से इंद्रदेव भी संतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार अर्जुन देवताओं पर भी भारी पड़ते थे, भगवान शिव को भी संतुष्ट कर दिए। तो सब कथाओं को तो एक साथ कहा नहीं जा सकता, इसलिए एक महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करते हैं कि भगवान शिव जिनके युद्ध से संतुष्ट हो गए थे। गांडीव धन्यो परतारी रास्ते अलक्षितो यक्षर कूट गूढ़ो माया किरातो गिरीश तुतोषः। भगवान गिरीश, भगवान शिव उनसे संतुष्ट हो गए। वो अर्जुन कुशल से है ना। अब महाराज युधिष्ठिर का समाचार हो गया, भीमसेन का हो गया, अर्जुन का हो गया। अब नकुल सहदेव, नकुल सहदेव की विशेषता देखिए। यमा उतस्तु तनयौ पृथायः पार्थैवृतौ पक्ष्मभिरक्षणीव रे मात उदाय मृधेश्वरिक्थम परासुपर्णा विवर्जिर्वक्तात्। तो उतस्थित प्रथाया यमौ तनौ पक्ष भी अक्षणी इव पार्थई वृतो मृधे परात। तो क्या कुंती के यमज पुत्रों में नकुल सहदेव, जो पलकों से दो आंखों की जैसे रक्षा की जाती है, वैसे प्रथा कुंती अपने दोनों पुत्र नकुल सहदेव की रक्षा करती थी, वो कुशल से है। और इसके साथ कहते हैं पार्थई वृतो मृधे परात स्वरिक्तम वज्रवक्ता सुपर्ण इव उदाय रेमात। ते वे प्रथा पुत्र अर्जुन, भीम, महाराज युधिष्ठिर आदि नकुल और सहदेव की रक्षा करते थे, वैसे जैसे आंखों की रक्षा पलकें करती हैं, वैसे रक्षा करते थे। वे दोनों भाई अपने पुरुषार्थ से युद्ध में अपने शत्रु कौरवों दुर्योधन आदि को हराकर अपना धन प्राप्त कर लिए। अब प्राप्त करने का उदाहरण कैसे दे रहे हैं, कहते हैं स्वरिक्तम वज्रवक्ता सुपर्ण इव उदाय। जैसे देवताओं के हाथ में पड़ा हुआ अमृत कलश को गरुड़ जी छीन लिए थे, वैसे अपने शत्रु दुर्योधन आदि से अपने राज्य को प्राप्त कर लिए, ये उदाहरण दे रहे हैं। न स्वर्गाधिपति इंद्र के हाथ में विश्व प्रसिद्ध अमोघ अस्त्र रहता है, वो है वज्र। वज्र जिनके हाथ में है उस इंद्र को वज्रपाणी कहते हैं। वज्रपाणी इंद्र के हाथ में अमृत कलश था, हाथ मतलब स्वर्ग में था सुरक्षित, और उस अमृत कलश को गरुड़ जी एक बार लेकर चल दिए, और गरुड़ जी का विरोध करने के लिए इंद्र अपने सारे ताकत लगा दिया, यहां तक कि वज्र का भी संधान किया, फिर भी गरुड़ जी उस अमृत को लेकर आ गए, नहीं मान पाए, वज्र छोड़ नहीं पाया, उसके पहले ही ला दिए। तो इतना बलवान थे गरुड़ जी, देवताओं को पराजित करके अमृत कलश छीन लिए थे। तो दुर्योधन इंद्र के समान बलवान था, फिर पृथापुत्र पांडव गण उसे अपना राज्य अदाय कर लिए, प्राप्त कर लिए, उदाय कह रहे हैं, अदाय करना, वसूलना। गरुण और पार्थ गण भगवान के भक्त हैं दोनों, इसलिए दोनों उपमा समुचित है, भगवान के प्रिय भक्त हैं, इनके बल की कोई सीमा नहीं है, भगवान जिनके साथ है वो कुछ भी कर सकता है, इसी से इतने बलवान शत्रुओं का सामना करने में सफल रहे। नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे, परंतु पति के साथ सती हो जाने पर नकुल सहदेव मातृहीन अनाथ हो गए, मातृ पितृहीन हो गए, माता भी नहीं पिता भी नहीं, पिता पांडु महाराज असमय में मृत्यु को प्राप्त हुए और माद्री उनके साथ सती हो गई, तो ये बेचारे दोनों मातृ पितृहीन हो गए। और इस दशा में महारानी कुंती इन दोनों पुत्रों का पालन करने की जिम्मेवारी ली अपने पुत्रों के साथ, और इतना स्नेह करती थी कुंती महारानी अपने पुत्रों महाराज युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन से बढ़कर स्नेह करती थी, इसलिए कुंती का तीन पुत्र नहीं कहा गया, पांच पुत्रों की मां कहा गया, पांच पुत्रों की मां थी कुंती, बहुत प्यार करती थी। इसके साथ ही तीनों भाई जो प्रथा के पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे महाराज युधिष्ठिर भीमसेन और अर्जुन, ये लोग दोनों भाई नकुल और सहदेव की ऐसी रक्षा करते थे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। उन दोनों भाइयों पर जितनी विपत्तियां आई विदुर जी सबको जानते थे, उन दोनों भाइयों के प्रति परम स्नेह से द्रविभूत होकर विदुर आशीर्वादात्मक जिज्ञासा कर रहे हैं कि वो नकुल और सहदेव अपना राज्य प्राप्त कर लिए ना, दुर्योधन के हाथ से अपना राज्य अदाय कर लिए, छीन लिए, और छीनने में भी उदाहरण दे रहे हैं जैसे गरुड़ जी छीन लिए। गरुड़ जी की कथा है, गरुड़ कश्यप जी के पुत्र हैं, कश्यप जी की अनेक स्त्रियां थी, उनमें से दीति अदिति तो प्रसिद्ध हैं, अदिति जी देवताओं की माँ और दीति दैत्यों की माँ, उसी प्रकार कश्यप जी ने सर्पों को भी जन्म दिया, पक्षियों को जन्म दिया, पशुओं को जन्म दिया, बहुत सारे सृष्टि किए, वो तरह तरह के सृष्टि किए, तो उसी में गरुड़ की माँ थी और उधर सर्पों की माँ, दोनों आपस में बहन भी थी और सौत भी थी। तो एक बार की घटना है कि गरुड़ की माता और सर्पों की माँ दोनों एक साथ बैठी हुई थी, ऐसे देख रही थी, उधर से घोड़ा आ रहा था, वरुण जी का घोड़ा, वो पूरा शरीर उसका उजला था, एकदम श्वेत। तो दोनों आपस में कहने लगी कि देखो उजला है, बहुत श्वेत है, चमक रहा है। तो सर्पों की माँ कही कि नहीं, सारा शरीर उजला है लेकिन पूंछ काला है। तो कही कि ना ना, सब उजला है। तो अब बात बात में बहस छिड़ गई, वो कह रही थी उजला है, वो कह रही थी नहीं एक काला है, और वास्तव में पूरा शरीर उजला था, एकदम पूंछ शरीर नाक कान सब। तो अब बहस में दोनों आपस में कहने लगी, अगर हमारी बात सत्य हो गई तो तुमको हमारा दासी बनकर रहना पड़ेगा। और वो कह रही थी हमारी सत्य हो गई तो तुमको दासी बनना पड़ेगा। तो सर्पों की जो माँ थी उसकी बात सत्य कराने के लिए कालिये एक जुगाड़ किया, कालिये सुन रहा था, वो गया और जा करके उस घोड़े के पूंछ में अपने शरीर को लपेट लिया पूरा। तो जब निकट में घोड़ा आया तो दिखा कि वो पूंछ काला है, यद्यपि वो झूठी घटना थी, वो काला नहीं था, वो काली लपेट दिया था। तो अब गरुड़ की माँ दासी हो गई। बाद में जब गरुड़ जी बड़े हुए तो उनको पता चला कि माँ तुम क्यों इसकी नौकरी करती हो, तुमको बड़ी सताती है, क्या बात है? तो कही कि बेटा मैं एक बार एक शर्त हार चुकी हूँ। तो फिर गए हो और जाकर कहे कि मौसी जी कौन ऐसा उपाय करूंगा कि तुम हमारी माँ को अपनी दासता से मुक्त कर दोगी। तो कही कि बेटा तुम स्वर्ग से अमृत लाकर दे दोगे और मैं अपने बेटों को पिलाऊंगी तो तुम्हारे माँ को मुक्त कर दूंगी। तो गरुड़ जी कहे ठीक है हम अमृत लाएंगे। तो इसके लिए गरुड़ जी स्वर्ग गए और स्वर्ग से अमृत छीन कर इंद्र के यहां से लेकर भाग गए। इंद्र थक गए रोकते हुए, लेकिन गरुड़ जी ले आए। तो इंद्र प्रार्थना करने लगे गरुड़ जी से कि आप अमृत ला दिए, हम अमृत पिलाएंगे जब सर्पों को, तो सर्प जब इतने विषैले सर्प अमर हो जाएंगे तो सारी सृष्टि ही नाश कर देंगे। तो गरुड़ जी कहे कि हमको सर्पों को अमर बनाना उद्देश्य नहीं है, अपने माँ को मुक्त कराना उद्देश्य है। हम लाकर मौसी के हाथ में दे देंगे अमृत कलश को और आप छीन लेना, हमारा काम भी हो जाएगा तुम्हारा भी। तो कहे कि ठीक है। तो गरुड़ जी अमृत लाकर दे दिए और इसके बाद इंद्र छीन ले गए। लेकिन इंद्र के हाथ से अमृत प्राप्त करना बहुत कठिन काम था, फिर भी गरुड़ जी कर लिए थे। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दुर्योधन के हाथ में गया हुआ राज सिंहासन आसान नहीं था, उसको ये लोग प्राप्त कर लिए। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नकुल सहदेव अपना हिस्सा प्राप्त कर लिए, मतलब पांडवों के साथ उनका अलग हिस्सा नहीं था, महाराज युधिष्ठिर के अधीनस्थ रहकर वो अपना राज सिंहासन प्राप्त कर लिए, इस प्रकार पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार कुशल पूछने में इनके द्वारा पांडवों के प्रति अतिशय स्नेह प्रकट हो रहा है, हमेशा उनके प्रति उनका आशीर्वाद उनका स्नेह है। अब पूछते हैं कुंती के विषय में, महाराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पांचों भाई का पूछ लिए, अब कुंती के विषय में पूछते हैं। अथो प्रथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षि वर्जेण बिना पितेन यस्त्वेक वीरोधिरथो विजिज्ञे धनु द्वितीय ककुभश्चतस्रः। अहो बड़े दुख की बात है, जो एक अद्वितीय वीर थे जिनके धनुष के टंकार से ही शत्रु शरण में गिर जाते थे, बिना सेना के केवल एक धनुष की सहायता से जो दिग्विजय प्राप्त किए थे, चारों दिशाओं में विजय की डंका बजा दिए। चतस्रह ककुभ विजिज्ञ, बिना युद्ध किए धनुष लेकर केवल धनुष का टंकार करते थे, शत्रु शरण में गिर जाते थे। ऐसे अद्वितीय विजेता महाराज पांडु से विवाह करके महारानी कुंती बहुत प्रसन्न थी, लेकिन असमय में महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। कहते प्रथा तीन राजर्षि वर्जेण बिना अपि अर्भकार थे ध्रियते, फिर भी महारानी कुंती अपने ऐसे समर्थ पति को प्राप्त करके भी अधिक काल नहीं रह पाई, असमय में महाराज पांडु की मृत्यु हो गई और बिना महाराज पांडु के विधवा जीवन जी। अरे इतनी सती कुंती पति के बिना जीवन धारण की, ये आश्चर्य का विषय है। तो कहते हाँ राजर्षि वर्जेण बिना राजर्षि वर्ज महाराज पांडु के जीवन धारण की, क्यों? तो कहते अपि अर्भकार थे ध्रियते, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे तो उन बच्चों की रक्षा के लिए वो सती नहीं हुई, बच्चों के पालन करने के लिए जीवित रह गई, वह कुंती कुशल से है ना, ये पूछना है। पांडु महाराज एक ऋषि पत्नी के श्राप से ग्रसित थे, और असमय में उनकी मृत्यु हो गई, अपनी पत्नी माद्री से संग की इच्छा किए और मृत्यु हो गई, तो उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री सती होने के लिए तैयार हो गई। पर माद्री ने अल्प वयस्क पुत्रों की रक्षा हेतु कुंती से प्रार्थना किया कि बहन आप बच्चों की रक्षा के लिए जीवित रहो और मेरे कारण पति की मृत्यु हुई है तो मैं इस कलंक युक्त देह को धारण करके जीवित नहीं रह सकती, एक कारण। और दूसरा कारण है कि मेरे अंदर अपने पुत्रों के प्रति ज्यादा स्नेह है लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम समान रूप से पालन करोगे इसलिए तुमको जीवित रहना चाहिए। तो माद्री के मत को महर्षि व्यास देव ने समर्थन किया, तो महर्षि व्यास के समझाने से कुंती पति के साथ नहीं जल पाई, माद्री पति के शव के साथ सती हो गई। तो महाशोकाग्नि में जलती हुई कुंती जीवित रहने की निश्चय कर ली। क्यों निश्चय कर ली? बच्चों के पालन के लिए। पति की अनुपस्थिति में संसारिक सुख भोगने के लिए नहीं, प्रत्युत बच्चों के पालन के लिए कुंती जीवित रही, यह महत्वपूर्ण बात है। तो कुंती देवी के जीवन में कितनी घटनाएं घटी, कितनी विपत्तियां आई, वीरू जी सबको जानते थे। अद्वितीय वीर पांडु जैसे पति के बिना विधवा बनकर कुंती के लिए जीना असंभव था, फिर भी वो अपने पुत्रों के रक्षा के लिए जीवित रह गई। तो इस प्रकार समाचार पूछने में विदुर जी कुंती के अद्वितीय पातिव्रत के अतुल्य धैर्य और पुत्रों में असीम प्रेम का स्मरण करते हुए पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री पति के बिना भी जीवित रही, उसका क्या कारण था? गुरुजनों का आदेश, बच्चों के प्रति स्नेह और समर्थ बच्चे, कृष्ण भक्त बच्चों का पालन, यह कुंती के जीवन का लक्ष्य था। इस प्रकार से वह जीवित रही। कुशल से है ना, जीवन तो बीत गया केवल विपत्तियों के साथ, अब तो अपना हस्तिनापुर का राज सिंहासन प्राप्त की, अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक है ना, यह पूछ रहे हैं। इसके बाद लास्ट में धृतराष्ट्र के विषय में पूछ नहीं रहे हैं, क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। सौम्यान सोचे तमध पतंतम भ्राते परेताय विदु दुहे यह निर्यापितो जेन सुहृत् स्वपुर्याम अहम स्वपुत्रां समनुव्रतेन। हे सौम्य, हे उद्धव जी, यह परेताय भ्रात्रे विदुद्रुहे स्वपुत्रान समनुव्रतेन जेन स्वपुर्याम सुहृद अहम निर्यापित। कहते हैं कि हे उद्धव, जो अपने मरे हुए भाई पांडु के प्रति भी द्रोह किया है, पांडु महाराज असमय में मर गए, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, उन बच्चों के साथ द्रोह करके वो अपने भाई के साथ द्रोह किया, अपने पुत्रों के अधीन रहकर जिस भाई के द्वारा अपने नगर से हितकारी मैं निकाल दिया गया, उस भाई के विषय में पूछ रहा हूं। विदुर जी एक एक बातें याद कर रहे हैं कि वह अपने मरे हुए भाई के प्रति भी द्रोह किया, उनके छोटे बच्चों से द्रोह करके अपने छोटे भाई पांडु से द्रोह किया, और हमारे जैसे भाई जो मैं सदा उसका हितकारी हूं, हमेशा उसका हित चाहता हूं, अपने पुत्रों के गुलाम वह अंधा धृतराष्ट्र मुझको अपने पूरी से हस्तिनापुर से निकाल दिया, तो फिर क्या जानना चाहते हैं उसके विषय में? तो कह रहे हैं अध पतंतम तम धृतराष्ट्रम अनुसोचे, नरक में गिरते हुए धृतराष्ट्र के लिए मैं सदा शोक कर रहा हूं, कुशल नहीं पूछ रहा हूं, अब केवल यही सूचना मिलने वाला है कि वो नरक में गिरा कि नहीं, किस डेट को गिरा, तो जाएगा ही नरक में, उसके विषय में क्या पूछना है? जब हनुमान जी लंका से लौट कर आए, लंका जला उला कर सीता का पता लगाकर, तो भगवान राम पूछे कि हे हनुमान सीता का कुशल सुनाओ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, नहीं सॉरी, हनुमान जी कहते हैं सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनु कहे भल दीन दयाला। कहे दीन दयाल, अच्छा तो यही है कि सीता के विषय में मत पूछिए। सीता के अति विपत्ति विशाला, इतना भारी विपत्ति है कि बिनु कहे भल दीन दयाला। अच्छी बात तो यह है कि उसकी चर्चा ही न की जाए, मत पूछिए, बहुत दुखी है सीता। और दूसरी बात कि जो व्यक्ति अपने जीवन में भजन नहीं करता, भगवान का स्मरण नहीं करता, उसका जीवन कुशल पूर्वक रह ही नहीं सकता, तो धृतराष्ट्र के विषय में क्या कुशल पूछना है। वो कृष्ण से, कृष्ण के भक्तों से विरोध किया है, उसका तो नरक निश्चित है, क्या उसके विषय में पूछना है। एक बार भगवान राम हनुमान जी से पूछे कि हनुमान ठीक ठाक हो ना, कुशल है ना। उस समय भी हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर दिए थे, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, विपत्ति तो उस समय है जब आपका भजन नहीं होता है। इस समय तो मैं आपके साथ हूँ, आपकी सेवा में हूँ, इस समय क्या पूछना है, इस समय तो कुशल ही कुशल है। तो इस प्रकार विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र का कुशल नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के कुशल की कोई संभावना थी ही नहीं, केवल नरक में गिरने का संवाद मिलना बाकी था बस। विदुर धृतराष्ट्र के सच्चे हितैषी थे, सर्वदा हित चाहते थे। अब भी उनके हृदय में धृतराष्ट्र के प्रति करुणा है। इस बात से विदुर का हृदय बहुत दुखी था कि धृतराष्ट्र अपने मरे हुए भाई पांडु के साथ भी द्रोह किया, उनके छोटे छोटे बच्चों से द्रोह किया। इसका अर्थ है अपने भाई के संबंध को नहीं ध्यान दिया। और फिर एक विशेष बात कर रहे हैं कि मेरे जैसे हितैषी भाई, सर्वदा मैं उसका हित चाहता था, फिर भी अपने दुष्ट पुत्रों का पक्ष लेकर मुझको राज्य से निकलवा दिया। विरोध तक नहीं किया कि दुर्योधन ऐसा मत करो, हाय हाय मैं क्या कहूं। इसके बाद भी विदुर जी धृतराष्ट्र के प्रति शत्रुता नहीं बल्कि सुहृदता बस पूछ रहे हैं, नहीं पूछते हुए भी पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र के अंतिम जीवन में विदुर जी उनके सबसे वास्तविक असली सुहृद के रूप में प्रकट हुए। 35 वर्षों के बाद लौट कर आए हस्तिनापुर में और विदुर को निकाल कर हरिद्वार ले गए। इस तरह से विदुर जी धृतराष्ट्र के सबसे सच्चे सुहृद सिद्ध हुए। विदुर जैसे वैष्णव का यही वास्तव में आदर्श आचरण होता है, यही होना चाहिए। वो अपने शत्रु का भी मंगल चाहता है, जो उसके जीवन में थोड़ा सा भी उपकार किया है उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, यह वैष्णवता है। ऐसा नहीं कि जीवन भर उपकार किया, थोड़ा सा उससे गलती हो गई, जान अनजान में जैसे भी बस उसी को याद रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साधारण प्राणी कुत्ता है, उसको रोटी जो देता है उसके प्रति वो कृतज्ञ रहता है। कदाचित डंडा भी मार दे तो बेचारा रोता हुआ भाग जाएगा, लेकिन फिर स्वामी के पीछे पीछे चलता है। लेकिन मनुष्य समाज का इतना भारी दुर्भाग्य है कि उसके अंदर कृतज्ञता घर कर गई है, कृतज्ञ नहीं हो पाता है। लेकिन वैष्णव को सर्वदा कृतज्ञ होना चाहिए, विदुर जी आदर्श है। धृतराष्ट्र के मंगल कामना मन में है और बाद में उसी धृतराष्ट्र का उद्धार करने हस्तिनापुर आएंगे, ये सब कथाएं हैं। तो इस प्रकार कुरुओं की वार्ता हो गई। अब उसी कुरुओं में अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सोहम हरिर्मर्त विडम्बने न दिशो निराम चालिय तो विधातु, नान्यो पलक्ष्य पदवीं प्रसादा चरामि पश्यन् गत विस्मयोत्र। स अहम्, वही मैं, कौन मैं, भाई धृतराष्ट्र के द्वारा राज्य से निकाला गया मैं, जिसको हमारा भाई घर से निकाल दिया वह मैं, आज मत विनम्बने नृणाम दिशा चालयता विधातु हरे है प्रसादा पदवीम पश्यन। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं विदुर जी, कह रहे हैं कि मनुष्य लीला का अनुकरण करने वाले भगवान जो मनुष्यों को बुद्धि को भ्रम में डाल देते हैं, ऐसा अद्भुत व्यवहार करते हैं, ऐसी मनोहर लीला करते हैं कि अपनी लीला से अच्छे अच्छे विद्वानों को भी भ्रमित कर देते हैं। वो भगवान कृष्ण की प्रसादात उनके कृपा से तस्य पदवीं पश्यम, मैं उनके स्वरूप की महिमा को देख रहा हूँ, उनको देखते हुए गत विस्मय, मुझको कोई शोक नहीं है, कोई मोह नहीं है, न अन्योपलक्ष्य, मैं दूसरों से अलक्षित होकर अत्र चरामी इस भारत वर्ष में घूम रहा हूँ, इस भूतल पर सुख प्रकार सुख पूर्वक विचरण कर रहा हूँ, यह कह रहे हैं। अब रही कुशल पूछते पूछते अपने विषय में कहने लगे कि देखिए भगवान की विशेष कृपा मुझ पर है, मैं भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की ऐसी मनुष्य लीला है कि उसको देखकर मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। श्री कृष्ण भी एक मनुष्य है, दुर्योधन और धृतराष्ट्र कृष्ण को मनुष्य मानकर उनका संदेश उनका उपदेश स्वीकार नहीं किए। विदुर जी कहते हैं मैं भगवान की पदवी को देख रहा हूँ, मतलब उनकी महिमा, उनकी भगवत्ता, उनकी कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। पदवी का एक अर्थ है उनका चरण सब जगह देख रहा हूँ, भारतवर्ष के अनेक पवित्र स्थानों में भगवान का चरण दर्शन हो रहा है, उनका श्री विग्रह मंदिर दर्शन हो रहा है, उनके चिन्हित मार्ग को देखते हुए घूम रहा हूँ। विदुर की युक्ति से ऐसा लगता है कि दुर्योधन के द्वारा निकाले जाने पर विदुर को बहुत क्षोभ था, शुरू में बहुत क्षोभ था, बार बार उनको क्षोभ होता था कि हाय हाय जिनके लिए मैं ऐसा किया वो हमको निकाल दिया, पूरा जीवन लगा दिया कौरवों के पालन करने में और वो कौरव मुझको एक सेकंड में लात मारकर निकाल दिए, इस तरह दासी पुत्र कहकर अपमानित करके निकाल दिए, इस शोक समुद्र में खेद के समुद्र में विदुर डूबते उतराते हुए हस्तिनापुर से बाहर निकले और तब तक भगवान उनके सामने प्रकट होकर उनको आश्वासन देते हैं, मेरे परम प्रिय विदुर मेरे विरह में मेरा स्मरण करो, क्यों खेद कर रहे हो, तुम इस तरह दुखी क्यों हो, आप जहां जहां जाने की इच्छा करोगे वहां वहां मेरा दर्शन होगा, जहां चाहोगे वहीं देखोगे, उसी तीर्थों में मैं आपके साथ रहूंगा, आप मुझसे बातचीत करते हुए दर्शन करते हुए मिलेंगे। भगवान के द्वारा विदुर जी को यह वरदान मिला था, इसका अनुमान कुछ घटनाओं से लगता है। तीर्थों में केवल अकेले घूमते थे, किसी की संग की अपेक्षा नहीं थी, अगर वो कृष्ण सानिध्य का अनुभव न करते तो एक महासभा में रहने वाले, एक राज्य पद पर प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला व्यक्ति एकाएक एकांतिक जीवन क्यों चाहेगा, इसका मतलब कि उनको कृष्ण का सानिध्य प्राप्त था। और दूसरा प्रबल प्रमाण है कि दुर्योधन के वध के बाद भी, युधिष्ठिर के राज प्राप्ति होने पर भी, इस संवाद मिलने के बाद भी वो नहीं लौटे, केवल भगवत दर्शनानंद में निमग्न होने के कारण विदुर जी को कुछ और अच्छा नहीं लग रहा था। ये सुन लिए कि हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर का राज्य हो गया फिर भी नहीं लौटे, नहीं तो लौट गए होते। तीसरा प्रमाण यह है कि जब तक मौसल लीला नहीं हुआ, जदुवंश का विनाश नहीं हुआ, तब तक तो विदुर जी बड़ा आनंदित घूम रहे थे, लेकिन मौसल लीला के बाद जब भगवान भी अंतर्हित हो गए, अपने नित्य धाम को चले गए, इसके बाद विदुर जी के आंखों से भी कृष्ण का दर्शन तिरोहित हो गया, ओझल हो गए भगवान, तब विदुर एकदम विकल हो गए और विकल होकर के वे घूमने लगे और उस स्थिति में कातर भाव में कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, अब दर्शन कैसे होगा, अब दर्शन कैसे होगा, इसके पहले वे विकल नहीं थे बल्कि परमानंद में निमग्न थे। विदुर जैसे महाभागवत पुरुष के लिए द्वारिका में साक्षात भगवान और युधिष्ठिर आदि भक्तों से भेंट किए बिना रह जाना बड़ा आश्चर्य का विषय है। नहीं भेंट करने का कारण यही था कि कृष्ण के साथ निरंतर थे और जब कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होना बंद हो गया तब विकल हो गए और उस विकल अवस्था में उद्धव से प्रश्न कर रहे हैं। तो इसके साथ फिर भगवान पर आ गए, चालू किए भगवान के विषय में पूछना, फिर भगवान के विषय पर आकर अपना वक्तव्य पूरा करते हैं। नूनम निपाणम त्रिमदोत्पथानम मही मुहुश्चाल्यतम चमु भी बधात प्रपन्ना तिजिहिर्षिसौ अप्युपच्छत्ताघम भगवान करुणम। कहते नूनम त्रिमदोत्पथानम चमु भी मुहु महिम चाल्यतम। निश्चित ही विद्या धन और जाति आदि से जो बहुत ज्यादा उन्मत्त हो गए थे ऐसे असत पथगामी दुष्ट राजाओं को बार बार बध करने की इच्छा से भगवान एक योजना बनाए कि सबको घूम घूम करके नहीं मारना है, एक जगह बुला कर ऐसे दुष्टों को मारना है। प्रपन्नार्थी जिहिर्षया भगवान ईसा अपि करुणाम अघम उपेक्षत। कई बार भगवान अपराध को क्षमा करने जैसा व्यवहार किए, लगता था कि एकदम कुछ नहीं करना है, लेकिन भगवान की एक विशेष योजना थी। बड़े दीर्घ सोची थे, दीर्घदर्शी थे, दूर देखते थे कि अब क्या होगा। यह राजनीति का एक मुख्य पक्ष होता है, भगवान विचार करते थे कि नहीं अभी नहीं। जैसे जरासंध पहली बार जब मथुरा पर चढ़ाई किया तो श्री बलराम जी उसको पकड़ लिए, अब गदा से मारने ही जा रहे थे तब तक भगवान कहे नहीं नहीं भैया इसको मत मारिए, अरे ये तो दुष्ट है इसको मारना जरूरी है। हाँ मारना है लेकिन अभी नहीं, ये जीवित रहेगा तो दुनिया में जितने हूट बदमाश दुष्ट है उनको जुटाएगा और फिर लेकर मथुरा आएगा तो घर बैठे हम लोगों का काम होता रहेगा। इस तरह से 17 बार भगवान छोड़े जरासंध को और 17 बार जाकर 23-23 एक छौड़ी सेना जुटा जुटा कर मथुरा आता था, तो घर बैठे भगवान असुरों का संहार करते रहे। उसी प्रकार जब महारानी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान को सारी बनने की क्या जरूरत है, वहीं उपस्थित होकर सारे दुष्टों को मार दिए होते, लेकिन ऐसा नहीं किए। ऐसा इसलिए नहीं किए कि जितने दुष्ट हैं सब जुटेंगे महाभारत युद्ध में, दोनों पक्ष से जुटेंगे और एक जगह सबको मारा जाएगा। ऐसे दुर्योधन दुशासन को दो को मार कर क्या करेंगे। महाभारत की योजना बनाया जाए जिसमें जितने बदमाश गुंडे हुड है सब आएंगे और एक जगह सबको मारा जाएगा। इस तरह से भगवान की विचित्र लीला है, उनके भक्त बनवास में घूम रहे हैं, भगवान उसको सह रहे हैं, दूत बनकर आ रहे हैं और उनको बांधने की योजना दुर्योधन बना दिया फिर भी सह लिए। उन दुष्टों का तत्काल वध कर देना चाहिए था फिर भी भगवान नहीं किए, क्यों नहीं किए। तो इस संभावित प्रश्न का उत्तर देते हुए विदुर जी कह रहे हैं कि भगवान केवल कौरवों का वध करना नहीं चाहते थे, वे समस्त दुष्ट राजाओं का वध करना चाहते थे। भगवान जानते थे कि कौरव पांडवों के इस विश्व युद्ध में भूमंडल के समस्त बदमाश लोग जुटेंगे, बिना निमंत्रण दिए भी आएंगे, दोनों के पक्ष से आएंगे। इसका कारण था कि वे लोग बिना मतलब के पृथ्वी का भार बने हुए थे, बड़ी बड़ी सेना जुटाकर घूम रहे थे, निरपराध जनता को सता रहे थे, धन विद्या और उच्च वंश में जन्म लेने के कारण उनका मद बढ़ा हुआ था। तो ऐसे उन्मत्त राजाओं का वध करने का उद्देश्य था। वे सब बहुत दुष्ट थे, पर स्त्री गामी, पर धन अपहरण करता, जुआ खेलने वाले, असत कर्मों में लगे रहने वाले लोग थे। तो उन समस्त दुष्ट क्षत्रियों को कुरुक्षेत्र में जुटाकर बिना हथियार उठाए आपस में लड़ाकर भगवान सबको नष्ट कर दिए। इसीलिए द्रौपदी वस्त्र हरण के समय या संधि दूत बनकर आए थे उस समय के अपमान को भगवान आसानी से सह लिए। तो फिर आगे अजस्य जन्मोत्पथ नाशनाय कर्माण्य कर्तु गहराय पुंसाम नन्मन्यथा कोरहति देह जोगम परो गुणानाम उत्कर्म तंत्रम। तो निश्चित रूप से उत्पथ गामियों के नाश के लिए अजन्मा का जन्म हुआ। वो जन्म नहीं लेते हैं साधारण मनुष्यों जैसा, अवतार लेते हैं। अकर्ता को कर्म करना पड़ा भक्तों को सुख देने के लिए, अन्यथा भगवान के जन्म कर्म की कथा तो दूर रही, वे कर्म विस्तार में कैसे पढ़ना चाहेंगे। कहते हैं अकर्तु कर्माणि पुंसाम गहराय, अकर्तु होकर भी कर्म किए कुछ नहीं करना पड़ेगा भगवान को। उनके इच्छा से सृष्टि चलती है, पालन होता है, संहार होता है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अकर्ता होकर भी कर्म किए भक्तों के लिए। भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, विशेष लीला करते हैं। अन्यथा भगवतः जन्मादि कथा तावत आस्था कह देह जोगम गुणानाम पर, गुणों से पार हो गए उनकी कथाओं की चर्चा करके कर्म तंत्र उत अरहति। इस प्रकार भगवान की विचित्र लीला है, विचित्र व्यवहार है। अजन्मा का जन्म, अकर्ता का कर्म निश्चित रूप से एक अद्वितीय लीला व्यापार है। भगवान में अपना पराया आदि का भाव क्यों देखा जाता है? कभी कभी देखा जाता है कि भगवान किसी का पक्ष ले रहे हैं, किसी से युद्ध कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि भगवान सबके प्रति सम है, साथ ही भक्त वात्सल्य गुण है भगवान के अंदर, और भक्त वत्सल भी है। भगवान सबके हितैषी हैं, उनका जन्म मायाधीन नहीं है बल्कि भक्त प्रेमाधीन है। भगवान का जन्म दिव्य है। एक प्रश्न किया जा सकता है कि मानो भगवान का जन्म दिव्य है तो इस जन्म की जरूरत क्या है? तो विदुर जी उत्तर देते हैं उत्पथ नाशनाय, जो उत्पथ गामी है असुर लोग उनको नाश करने के लिए, अपने हाथ उनका विनाश करके मोक्ष देने के लिए। तो फिर भगवान के कर्म भी सत्वादी गुणों के अधीन नहीं है बल्कि चिदानंदमय है। तो जो भक्त स्वर्ग मोक्ष आदि सुख को त्रिणवत त्याग चुके हैं उनके ग्रहणाय आस्वादनीय वस्तु के रूप में स्वीकार करने के लिए भगवान लीला करते हैं। जिन भक्तों को संसार का कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई वैभव नहीं चाहिए, स्वर्ग आदि का सुख नहीं चाहिए, ऐसे भक्तों को क्या चाहिए, किसके लिए सबका त्याग करते हैं? तो कहते हैं अनुग्रहाय, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानाम मानसम देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा जा श्रुत्वा तत्परो भवेत। श्री भगवान मधुर लीला करते हैं, गोवर्धन धारण करते हैं, कालिय दमन करते हैं, दवानल पान करते हैं, अपने मित्रों के साथ गोचारण करते हैं, विविध प्रकार के लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। जिन लीलाओं को देखकर, सुनकर, समझकर बड़े बड़े परमहंस, अमलात्मा, जोगी जन आनंदित हो जाते हैं, ऐसी भगवान की विशेष लीला है, अद्भुत लीला है। भागवतम में कई श्लोकों में इन सब का वर्णन किया गया है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सृजना। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जो इस दिव्यता को समझ लेता है वो आवागमन के चक्कर में फिर जन्म, फिर माता के गर्भ में आना ये सब नहीं होता, वो मेरे धाम में आ जाता है। तो फिर भगवान के जन्म कर्म के विषय में भगवत गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं भी कर्म करता हूं लेकिन कर्म फल में नहीं बनता। न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फलेष्पृहा इति माम यो भजानाति कर्म भी न बद्धते। भगवान कहते हैं कि न माम कर्माणि लिम्बन्ति, मैं बहुत सारा कर्म करता हूँ, इतना विशाल सृष्टि की रचना किया, पालन कर रहा हूँ, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता हूँ। न मैं कर्म फले स्प्रिया, न मुझको इन कर्मों का रिजल्ट चाहिए। कुछ लोग कुछ काम करते हैं तो सोचते हैं कि क्या इसमें नफा होगा, क्या फायदा है, कर्म में और कर्म के फल में आसक्त हो जाते हैं, उनको रिजल्ट चाहिए। मुझको रिजल्ट की कोई जरूरत नहीं, न मैं कर्म फले स्प्रिया, मुझको कर्म फल की स्प्रिया नहीं है, नहीं इच्छा है। इति माम यो भी जान आती, जो मेरे इस रहस्य को जान जाता है कि मैं करता होकर भी अकर्ता हूँ। एक बिल्डिंग बनाने वाला, एक मकान बनाने वाला लोग आ सके, मेरा बिल्डिंग है, मेरा मकान है, मैंने फैक्ट्री लगाया है, मेरी ये खेती है, इतनी अहंकार, इतनी भावना आसक्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं कि मैं नहीं इसमें आसक्त होता हूँ, सब रच कर भी न्यूट्रल हूँ। जो इस रहस्य को जान जाता है वो भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। ये है विचित्र भगवान की स्थिति। सारे वैदिक मर्यादा संसार के पालन के लिए बनाए हैं, लेकिन भगवान पर ये लागू नहीं होता। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि आकाश में चलने वाला बाईवान को रोड का सिग्नल से कोई मतलब नहीं है। रोड का सिग्नल रेड है कि ग्रीन है, उस पर केयर वो बाईवान वाले नहीं करते। कोई अनजान आदमी कह सकता है कि अरे ये सिग्नल लाल है, देखो जहाज पार कर गया, ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सिग्नल तो रोड पर चलने वालों के लिए है, आकाश में चलने वालों के लिए नहीं है। भगवान पर कर्म बंधन नहीं लगता, भगवान कर्म बंधन से ऊपर होते हैं, लेकिन प्राकृत जगत में आते हैं। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कारागृह में, जेल में कैदी भी होते हैं, और कभी कभी जेलर, कभी कभी मजिस्ट्रेट भी दिखते हैं अंदर। जेलर तो हमेशा उसी में रहता है, लेकिन कैदियों पर जो उनके केस के कारण, अपराध के कारण जो दंडनीय दंड दिया जाता है, वो दंड जेलर के साथ नहीं है। वो उसमें ड्यूटी भले करता है, लेकिन वो अपराधी नहीं है। उसमें जाने वाला मजिस्ट्रेट उसके निरीक्षण के लिए जाता है, उस पर कोई अपराध नहीं है। वो उसके कर्म फलों पर, उसमें मिलने वाले सुख दुख से उसको कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार इस प्राकृत जगत में भगवान आते हैं, कभी कभी उनके प्रतिनिधि भक्त आते हैं, पार्षद, वे भी कर्म फल से रहित होते हैं, उन पर इस संसार का नियम लागू नहीं होता। इस तरह से उद्धव जी भगवान के गुणों का स्मरण करते हैं। अब एक श्लोक अंत में, तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासनेश्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। विदुर जी वास्तव में परमहंस महापुरुष हैं, कह रहे हैं कि हे सखे, अपने अनुशासन में अवस्थित समस्त लोकपालों और राजाओं को प्रयोजन सिद्ध हेतु जदकुल में आविर्भूत अजन्मा संसार तारणी कीर्ति वाले उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो। मैं चाहे कुछ भी पूछ दिया आवेश में आकर, आसक्ति बस बहुत लोगों के विषय में पूछा, छोड़ो उन चर्चाओं को, आप भगवान की चर्चा करो। लास्ट में कह रहे हैं, वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हे सखे, हे उद्धव, उद्धव उम्र में छोटे हैं विदुर जी से, नाता में भी छोटे हैं, भगवान के फूफा लगते थे विदुर जी, लेकिन विदुर जी सखा संबोधन कर रहे हैं, एक लेवल पर वैष्णव मानकर कह रहे हैं कि हे सखे, अपने अनुशासन से, अपने पूरे ताकत से संपूर्ण जगत को जो कंट्रोल करते हैं, और प्रपन्ना अखिल लोक पाना, जो लोग उनके शरण में आते हैं, ऐसे भक्तों का जो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, सुख देने के लिए, जो अर्थाय जदुषु जातस्य अजस्य तीर्थ कीर्ते तस्य भगवतः कृष्णस्य वार्ताम कीर्तय। जो अपने भक्तों को सुख देने के लिए जदकुल में अवतार लिए हैं, ऐसे श्री भगवान की कथा कहो, जो संसार तारणी है तीर्थ कीर्ते, सबसे पवित्र करने वाला चीज है भगवान की कथा। भगवान की कथा में जितनी पवित्रता है उतनी पवित्रता तीर्थों में नहीं है। तीर्थ कहते हैं पवित्र करने वाले स्थान को, जिसमें डुबकी लगाकर पवित्रता प्राप्त होती है, वो गंगा, जमुना, सरजू, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, तापी, ये सब पवित्र नदियां हैं भारत में, जिसमें गोता लगाने पर पाप मिटता है। तो ऐसे तीर्थों में जाकर लोग पवित्र होते हैं, लेकिन पवित्रता के बाद फिर पाप करने की प्रवृत्ति रह जाती है। जैसे हाथी किसी सरोवर में खूब देर तक स्नान करता है और बाहर निकलने के बाद सड़क का धूल लेकर शोर से फिर ऊपर फेंकता है, वैसे हालत है तीर्थ करने वालों की। मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी, अब पहली आदत छुटी नहीं, फिर पाजी के पाजी। हज करके हाजी साहब आ गए, लेकिन गाय का मांस खाना नहीं छोड़े, वही बेविचार, वही दुराचार। तो इससे कोई फायदा नहीं निकलता, लेकिन कृष्ण कथा सुनने से जो पाप की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। कोई तीर्थ गंगा के तट पर सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, गंगा थोड़े मना करेगी कि मत पियो, गलत चीज है, लेकिन भक्तों को देखकर सिगरेट एक बार माचिस लगाने वाला व्यक्ति भी धीरे से फेंक देगा कि महात्मा जी आ रहे हैं, संकोच में हो जाए। तमाकू बनाने वाले लोग कैसे शर्मा कर तमाकू फेंकते हैं, हम लोग देखे हैं। तो इस तरह से पवित्र करता है वैष्णव समाज और कथा। कथा के माध्यम से भगवान की कीर्ति जब व्यक्ति सुनता है, धर्म का रहस्य सुनता है, पाप के विषय में सुनता है, तो डर जाता है, नरक का वर्णन सुनता है तो कांप जाता है। तो यह पवित्र करने वाला ही है, भगवान की कीर्ति, भगवान की महिमा। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म कर्म सच्चिदानंदमय है, चिदानंद। अतः लीला में श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कृष्ण के लीला में और कृष्ण में कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण के लीला श्रवण कीर्तन में भक्तों को साक्षात कृष्ण का सानिध्य का रसास्वादन होता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के संग से भी अधिक सुख उनकी लीला कथा में है। श्री कृष्ण के वियोग विष से दग्ध विदुर कृष्ण के कीर्ति सुधा समुद्र में अवगाहन करना चाहते हैं कि हमको कृष्ण कथा मिले। तीर्थ कीर्ते शब्द द्वारा विदुर अपने इस आंतरिक भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि इतने वर्षों तक मैं समस्त तीर्थों में भ्रमण कर लिया, उस तीर्थाटन की सफलता इसी में है कि हे सखे आप कृष्ण कीर्तन तीर्थामृत में मुझे निमज्जित कीजिए, मुझको भगवान की कीर्ति सुनाइए, भगवान के विषय में सुनाइए। मैं जो कुछ भी पूछ दिया आवेश में, कोई बात नहीं, लेकिन आप कृष्ण कथा कहो। क्योंकि कृष्ण के निकटतम व्यक्ति थे उद्धव जी, इसलिए उद्धव जी से अपेक्षा की जा रही है कि आप कृष्ण कथा सुनाएंगे। सबसे बेस्ट कृष्ण कथा उद्धव सुना सकते हैं, क्योंकि उद्धव भगवान के निजी मित्र थे, उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। इसलिए विदुर जी अपेक्षा रख रहे हैं कि उद्धव आप कृष्ण कथा सुनाओ, और कृष्ण कथा से हमारा शोक दूर हो जाएगा, हमारी अशांति दूर हो जाएगी, हम परम शांति का अनुभव करेंगे। कृष्ण विरह में संतप्त विदुर का यह उद्गार है। इसके बाद अब अगले अध्याय में उद्धव जी बोलना प्रारंभ करेंगे, जिसमें कृष्ण कथाओं को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।